धन्यवाद भाई, आइए अब प्रार्थना के लिए बस कुछ क्षण के लिए खड़े रहें। अब हमारे सिर झुके हुए हैं, क्या कोई कही गई विनती है या केवल अपने हाथ उठाने के द्वारा याद करवाएं? यदि आप अभी अपने बस हाथ को उठाएं, केवल अपने विनती को थामे रखें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपके पास फिर से आते हैं इन विनतियों के लिए। उन्होंने अपने हाथ को हवा में उठाया है और उनकी आज सुबह बहुत सारी जरूरतें हैं। प्रभु, आप जानते हैं कि वे अपने हृदय में क्या सोच रहे हैं, क्योंकि आप वचन हैं और वचन विचारों और हृदय के इरादों को जांचने वाला है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, सबसे अनुग्रहकारी परमेश्वर, कि आप उनमें से हर एक को उनकी जरूरतों के अनुसार उत्तर देंगे, यह जानते हुए कि आप इसे उनके विश्वास के अनुसार करेंगे। हमें विश्वास दे जैसे हम आपके वचन को बोलते हैं, तब प्रभु यह उनके लिए विश्वास को ला सके। मुझे आपके वचन को बोलने में सहायता करें, क्योंकि आपका वचन सत्य है कि यह इन विनतियों का उत्तर देने के लिए विश्वास को ला सकता है। और फिर यहाँ कुछ लोग हो सकते हैं प्रभु, जो उस सकेत मार्ग से भटक चुके हैं, जो उस सत्य के मार्ग में नहीं चल रहे हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता, आज कुछ तो किया जाएगा और उन्हें ज्ञात हो जाएगा, जिससे वे फिर से मसीह के साथ तुरंत ही संगति के उस मार्ग पर वापस आ जाएंगे। दिन निकलते जा रहे हैं, हर तरफ बुराई है, एक बड़ी गिरावट हो रही है, और हम प्रार्थना करते हैं पिता कि आज आप अपने आप को हमें ज्ञात करवाएंगे, हमारे विषय में बीमारों को चंगा करने के द्वारा अद्भुत कार्य करते हुए। ऐसा नहीं है कि आपको इसे करना है प्रभु, हमें ये बताने के लिए कि आप परमेश्वर हैं, लेकिन क्योंकि आपने ऐसा करने की प्रतिज्ञा की है, और हम जानते हैं कि आप हमें अपनी प्रतिज्ञाओं को प्रदान करेंगे यदि हम केवल उन पर विश्वास करें और जान लें कि वे सत्य हैं। हम यीशु के नाम में इन सहायताओं के लिए मांगते हैं, आमीन। आप बैठ सकते हैं। मैं यहाँ रखी हुई कुछ विनतियों को पढ़ने के लिए बस कुछ समय को ले रहा हूँ, जो दो या तीन हैं। उनमें से एक प्रार्थना की विनती है। यहाँ कई रुमाल जरूर रखे हुए हैं, जिन पर प्रार्थना करने के लिए प्रसन्नता होगी। हम थोड़ी देर में, जब हम महसूस करते हैं कि पवित्र आत्मा की उपस्थिति इसके शिखर पर है, यही वो समय होता है जब मैं इस पर प्रार्थना करने की कोशिश करता हूं, जब सारे सभा के लोग सभी उसकी उपस्थिति से अभिषेकित होते हैं। हम सोचकर बहुत खेदित हैं, इतने सारे लोग खड़े हुए हैं और उनके बैठने के लिए स्थान नहीं है, और गर्म मौसम का दिन है और उसके अधिक तापमान पर है। हमारे पास लगभग 100% नमी होती है, और जो लगभग 100 डिग्री होती है, सो यह बहुत ही चिपचिपा और गर्म मौसम है। और मैंने आज सुबह को चंगाई सभा के लिए रखा है, या मेरा इस चंगाई की सभा का कारण है कि मैं उस पर विश्वास रखता हूँ जो भी प्रतिज्ञा की गई है। देखा, अब मैं यह नहीं कह सकता कि वह ऐसा करेगा, लेकिन मेरा विश्वास है उसके वचन को सुनने के बाद और हमारे विश्वास के आधार के ऊपर उसने जो प्रतिज्ञा की है, उसके बाद हमारे पास उसके प्रतिज्ञाओं की चंगाई को दावा करने का अधिकार है, जैसे हम उसके उद्धार के प्रतिज्ञा के लिए करते हैं। ये कुछ विनतियां हैं। मैं नहीं जानता कि वे रिकॉर्डर अभी भी इसके लिए चालू रखा है या नहीं। ये अच्छा होगा, तो मुझे लगता है कि यह बाहर वालों के लिए अच्छा होगा कि सामान्य जन सुने। यह एक विनती है। क्या आपने भविष्यवाणी की थी कि वहाँ पर लाखों निग्रो मारे जाएंगे, या आपने बस ऐसे ही घोषणा की थी कि वहाँ होने जा रहा है? अब देखो, मैंने हमेशा आपको सचेत रहने के लिए कहा है कि आप क्या सुन रहे होते हैं। देखा, इसमें बहुत कुछ होता है जो कि केवल मनुष्य की ओर से होता है, लेकिन हमेशा ही यदि कुछ तो आगे होने वाला होता है तो वो कहेगा ये यहोवा यो कहता वाला वचन होगा, यहाँ तक कि दर्शन या जो कुछ भी हो। इस मंच के दर्शन, सभा के बीच में आप ऐसा अपने आप से कर रहे हैं, यह परमेश्वर नहीं है, यह आप हो। समझे, परमेश्वर उस दर्शन को उत्पन्न नहीं करता है, आप इसे अपने आप से करते हैं, एक दैविक दान में अपने विश्वास के द्वारा करते हैं। जैसे उस स्त्री ने उसके वस्त्र को छुआ, वह नहीं जानता था कि वह कौन थी या उसके साथ क्या गलत था, लेकिन उस स्त्री ने खुद से ऐसा किया। देखा, अब ये यहोवा यो कहता वाला वचन नहीं था, ये यहोवा यो कहता वाला वचन था जब यीशु ने वापस मुड़कर कहा और उसे बताया कि उसके विश्वास ने उसे बचा लिया है। लेकिन देखो, आपको ध्यान देना है। नहीं, मैं तो केवल इस महान मार्टिन लूथर किंग के बारे में बात कर रहा था, इसकी विपत्ति पर जो उन लोगों के साथ दक्षिण में है, उन अश्वेत लोगों के साथ। मैंने कहा, यदि वे लोग गुलाम थे तो मैं अपनी कलीसिया को लेकर और दक्षिण में जाऊंगा ताकि उन लोगों को गुलामी से निकालने के लिए सहायता करूं। मैं निश्चय ही करता, क्योंकि मनुष्य गुलाम बनाता है, परमेश्वर नहीं। हम सब एक ही लहू हैं, हम सभी एक ही पेड़ से आए हैं और वो आदम से था। परमेश्वर ने एक लहू के द्वारा सारे राष्ट्रों को बनाया है, और चाहे हम हमारा रंग भूरा हो या काला हो या पीला हो या लाल हो या जो कुछ भी हो, हम सब सर्वशक्तिमान की सृष्टियां हैं। देखो, और हमारे बीच कोई अंतर नहीं होना चाहिए। वहाँ सवाल आता है, अलगाव का स्कूल जब पहली बार विद्रोह हुआ, मैं वहाँ पर था और मैंने इसे सुना। मैं जानता हूँ कि मैं किस बारे में बोल रहा था। अश्वेत लोगों के पास अच्छे स्कूल हैं, कभी कभी अन्य स्कूलों की तुलना में वे बेहतर होते हैं। और उदाहरण के लिए चेवरे पोर्ट में जो श्वेत लोगों का स्कूल है, उसकी तुलना में उनके पास बहुत ही बेहतर स्कूल है। लेकिन यह किसी के तो विचार थे जिसने उन्हें प्रोत्साहित किया और उन्हें आगे बढ़कर और खुद को एक साथ मिलाना चाहिए, जो मैं सोचता हूँ यह ठीक रहेगा। लेकिन जब तक वे दक्षिणी लोग इसका विरोध कर रहे हैं, तब ये किसी की तरह से क्या फर्क पड़ता है। और मैं सोचता हूँ कि मार्टिन लूथर किंग कम्युनिस्ट प्रेरित हुए, जो लगभग 10 लाख लोगों की पूरी तरह से मृत्यु की जाल की ओर नेतृत्व करने जा रहे हैं। देखा, मैं नहीं कहता कि प्रभु ने मुझे बताया था, मैं विश्वास करता हूँ। देखो, और मैं विश्वास करता हूँ कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। मैं सोचता हूँ कि लोगों को मसीह होना चाहिए और भाइयों के रूप में एक दूसरे को पहचानना चाहिए। और लेकिन मैं बस इसलिए सोचता हूँ, यह संयुक्त राज्य, अब यह सरकार मुझे बताती है कि मैं एक चेक पर हस्ताक्षर भी नहीं कर सकता हूँ जो मुझे व्यक्तिगत रूप से दिया जाता है। देखा, यह मेरे द्वारा लिया गया व्यवस्था के अनुसार अधिकार है, लेकिन मैं इसके विषय क्या कर सकता हूँ, बस आगे बढ़ना है, ऐसा ही है। देखा, और इससे पहले मैं संयुक्त राज्य के नागरिक की नाई एक चेक को नकद भी करा सकूं, इसे किसी अन्य नियमों से होकर जाना है, इसे इस कलीसिया के माध्यम से आना है, मैं इसे चेक को नकद नहीं करा सकता। देखा, और यह सही नहीं है, यह व्यवस्था के अनुसार नहीं है, लेकिन मैं इसके विषय क्या कर सकता हूँ, कुछ भी नहीं। यहाँ पर यह टैक्स को लेने वाले ने मुझे बताया कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए तो ऐसा ही है। यदि ऐसा है तो उसका क्या हो, तो बस इसे होने दो। मैं सोचता हूँ कि यह वही बात होनी चाहिए कि मेरे अश्वेत भाई और बहन जो कि दक्षिण में हैं, अपने भाइयों के विरोध में हथियार नहीं उठाना चाहिए। और इस प्रकार की छोटी बातों पर, जैसे कि यह है, ओह, इससे क्या फर्क पड़ता है यदि आप स्कूल जाते हैं, कहाँ और क्या। मैंने उस सुबह एक भली अश्वेत महिला को देखा जब वे चेवरे पोर्ट में विद्रोह को कर रहे थे, और ये बूढ़ा अश्वेत सेवक नागरिक सेना मिलिशिया को बार बार बता रहा था। उसने कहा, मुझे उनसे बात करने दो। और सो वो एक धार्मिक मनुष्य था और वो वहाँ पर खड़ा हो गया और उसने कहा, मैं कभी भी अपने रंग से शर्मिंदा नहीं हुआ हूँ। उसने कहा, मेरे बनाने वाले ने मुझे बनाया है जो मैं हूँ, और मैं इससे कभी शर्मिंदा नहीं हूँ, लेकिन आज सुबह तक। लेकिन कहा, जब मैं आपको देखता हूँ, मेरे लोग इस तरह से बर्ताव करते हैं, तो कहा, तब मुझे अश्वेत मनुष्य होने से शर्म आती है। नागरिक सेना मिलिशिया ने उसे बुलाकर उसकी तेज आवाज को दबा दिया। सो कोई तो भली शिक्षित सभ्य दिखने वाली अश्वेत महिला खड़ी हो गई एक बुद्धिमता से, ओ सर्वोच्च, महिला ने कहा, पहली बात मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चों को एक श्वेत महिला के द्वारा पढ़ाया जाए। कहा, क्यों? कहा, क्योंकि वो मेरे बच्चों को दिलचस्पी नहीं लेगी जितनी हमारी एक अश्वेत महिला दिलचस्पी लेगी। और कहा, यहाँ पर हमारे स्कूलों को देखो, आप किस विषय में चिल्ला रहे हो? कहा, हमारे स्कूलों में स्विमिंग पूल और सब कुछ है और वहाँ पर उनके पास नहीं है। कहा, अब आप लोग किस विषय में चिल्ला रहे हो? और देखो, उन्होंने इस महिला की तेज आवाज को दबा दिया। ये गलत बात से प्रेरित है, आप देखें, वे लोग, और यही वो कारण है कि मैं ये कहता हूँ कि इसके विषय में कोई भी भविष्यवाणी नहीं है, इस पर मेरे पास प्रभु की ओर से कुछ भी नहीं है। और अब आप निश्चित हो जाएं, यदि मैं ऐसा कुछ भी कहता हूँ आपको बताने के लिए, यह हमेशा यह मैं अब बोल रहा होता हूँ, लेकिन जब वो बोलता है तो मैं कहता हूँ यह मैं नहीं हूँ, यह यहोवा यो कहता वाला वचन है। और जब तक वह मुझे नहीं बताता तब तक मैं इसे नहीं कह सकता हूँ। मैं अपने विचार से मार्टिन लूथर किंग के विषय में कुल मिलाकर गलत हो सकता हूँ, मैं नहीं जानता, मैं नहीं कह सकता हूँ, यह तो बस मेरी राय है। कुछ भी जो परेशानी ऊपर आती है, यही है वो जो अंतिम दिनों में होना चाहिए, और यह सब कुछ शैतान से प्रेरित है, हमारे प्रजातंत्र को तोड़ना, और हमारे पास जो कुछ भी है इस तरह से कुछ भी जो ऊपर आता है। तो मैं वहाँ उन लोगों के लिए हूँ, आप कभी भी नहीं सोचना कि मैं नहीं हूँ, मैं स्वतंत्रता के लिए और हर चीज के लिए हूँ, लेकिन लोग उस स्थिति में अभी नहीं है। लेकिन यह क्या करेगा, मैं सोचता हूँ कि यदि कोई इसे नहीं रोकता है तो यह एक और विद्रोह को आरंभ करेगा। देखो, यह कम्युनिस्ट है जो उन लोगों के बीच काम कर रहा है। मैं अफ्रीका में था जब उन्होंने उसी काम को किया था, देखा, और मैं जानता हूँ कि कम्युनिस्ट वहाँ आकर उन अश्वेत लोगों को बताते थे, ओह तुम ये हो वो हो या इत्यादि हो, तुम ये हो वो हो या इत्यादि हो। और पहली बात जो आप जानते हैं कि इसी कारण से वे हजारों लोग मार डाले गए, और वे कहाँ पर पहुँचे? कहीं नहीं, देखो कहीं नहीं। और मैं मानव जीवन से प्रेम करता हूँ, आइए परमेश्वर की सेवा करें, हमारा राज्य ऊपर से है, यहाँ इस चीज के बारे में कुछ लेना देना नहीं। जब हम खाते हैं, पीते हैं और कर सकते हैं जो कुछ आप करना चाहते हैं, देखा, तो मैं जानता हूँ कि यह क्या होगा, मैं समझता हूँ कि यह बस परेशानी का कारण बनता है। अब यहाँ एक और सवाल है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब वो यीशु से मिलता है, देखो उसने क्यों कहा कि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है, इसका क्या मतलब था? तो मुझे याद है कि डॉक्टर रॉय डेविस मेरे एक जिगरी दोस्त हैं, जिन्होंने मुझे एक समय बपतिस्मा दिया है जो मेरा कभी बपतिस्मा हुआ था, और उसने कहा कि यूहन्ना का अर्थ था, मुझे ये याद है, उनके स्कूल में उसने कहा था, यूहन्ना जानता था कि उसने कभी बपतिस्मा नहीं लिया था खुद का, वो यीशु, यूहन्ना यीशु को उसे बपतिस्मा करने से रुका। तो यह मैं उस महान डॉक्टर से भिन्न हूँ, विवाद करने के लिए नहीं, लेकिन सत्य के कारण मैं इसे कह सकता हूँ, नहीं, वहाँ दो मनुष्य थे, उस घड़ी के दो अगवा करने वाले, मसीहा और उसका नबी पानी में मिले थे। अब याद रखना, यूहन्ना पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा नहीं दे रहा था, लेकिन पश्चाताप का बपतिस्मा था, न ही पापों की क्षमा के लिए, क्योंकि बलिदान अब तक नहीं चढ़ाया गया था। देखो, वहाँ कोई बलिदान नहीं था, और बलिदान उसके पास पानी में आता है। अब ध्यान दें, यूहन्ना ने यीशु को देखा, उसने कहा, मुझे तुझसे बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है, और तू मेरे पास क्यों आता है? यीशु ने कहा, ऐसा होने दो, जो ये था, अब तो ऐसा ही होने दो, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब यूहन्ना एक भविष्यवक्ता होने के नाते कि जिसके पास प्रभु का वचन आया, जो केवल भविष्यवक्ता के पास आता है, यूहन्ना एक भविष्यवक्ता होने के नाते वो समझ गया कि वो बलिदान था, और नियम के अनुसार बलिदान को चढ़ाए जाने से पहले धोया जाना था, और यही वो कारण था कि उसने उसे बपतिस्मा दिया। देखा, उसने कहा, हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है, बलिदान जो कि वो था, बलिदान को चढ़ाए जाने से पहले नहलाकर धोया जाना अवश्य है। और यीशु बलिदान था, और यूहन्ना इसे जानता था, और वो जानता था कि उसे चढ़ाए जाने से पहले धोया जाना अवश्य है, और फिर तुरंत बाद उसे लोगों के लिए परीक्षा और बलिदान के लिए चढ़ाया गया था, जो सारे मानव जीवन के लिए था। प्रभु आपको आशीष दे। अब हमारे पास एक छोटा सा संदेश होगा, और भरोसा करता हूँ कि प्रभु हमें उसकी आशीष को हमारे लिए प्रदान करेगा। अब हो सकता है यदि मैं वापस आकर मैं अगले हफ्ते मैं बच्चों को लेकर पहाड़ियों में छोटी सी छुट्टी पर जा रहा हूँ और फिर यदि मैं समय पर वापस आ जाता हूँ तो हम अगले रविवार की सुबह बोलना चाहते हैं, यदि ये यहाँ परमेश्वर और पास्टर की स्वीकृति है तो हम इसे आने वाले हफ्ते में आपको पहले बता देंगे। जो शहर से बाहर रहते हैं आपको पत्र के जरिए से बता देंगे। मैं बिल्कुल इसी विषय पर बात करना चाहता हूँ कि हम उन चीजों पर क्यों विश्वास करते हैं जिन्हें हम मसीह के बारे में विश्वास करते हैं। ऐसा क्यों होना चाहिए और ये कोई दूसरा तरीका नहीं हो सकता है, देखा और इसे वचन के द्वारा साबित करना है। अब यदि परमेश्वर की इच्छा है, यदि मैं नहीं करता हूँ तो मैं आपको इस ठंड में या अगले गर्मियों में एक बार मिलने की कोशिश करूँगा जब हम वापस आ जाएंगे, परमेश्वर देर करता है तो। हम अब वापस घर जा रहे हैं एरिजोना की ओर, इसलिए कि हम बच्चों को स्कूल में भेज सकते हैं। अब आज सुबह बीमारों के लिए प्रार्थना से बस पहले हम कुछ परमेश्वर के वचन को पढ़ने जा रहे हैं जो हम जानते हैं कि यह असंभव है। इस वचन के बिना कुछ भी नहीं किया जा सकता है और केवल वचन ही इन आशीषों को उत्पन्न कर सकता है जिसे हम बीमारों और जरूरतमंदों के लिए मांग रहे हैं। और मैं पहले कुछ वचनों को पढ़ना चाहता हूँ, पहला पत्रस पांचवे अध्याय से पहले पद से आरंभ करते हुए और उसके बाद इब्रानियों की किताब से मैं इब्रानियों दो से लेकर चार तक पढ़ना चाहता हूँ।
The elders which are among you I exhort, whom am also an elder.
तुम में जो प्राचीन है मैं उनकी नाई प्राचीन और मसीह के दुखों का गवाह और प्रकट होने वाली महिमा में सहभागी होकर उन्हें यह समझाता हूँ।
Feed the flock of God which is among you. Take the oversight thereof.
कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो और यह दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर, और जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार न जताओ वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। और जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। और इब्रानियों में दूसरे अध्याय से हम इन वचनों को पढ़ते हैं। अब मैं एक विषय को देने के लिए निकाल रहा हूँ, अपनी चिंता को छोड़ दो। मैं मेरा विषय है वो चिंता करता है, क्या आप चिंता करते हैं? अब इस भाग को पढ़ना चाहता हूँ जब आप इब्रानियों दो को निकाल रहे हैं ताकि आप इन वचनों का वास्तविक अर्थ देख सकें कि वे क्या है, इस विषय का क्या अर्थ है। इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाएं, ऐसा न हो कि बहकर उनसे दूर चले जाएं, क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था जब स्थिर रहा और हरेक अपराध और आज्ञा न मानने का ठीक ठीक बदला मिला। तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चित रहकर क्यों कर बच सकते हैं जिसकी चर्चा पहले पहल प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें निश्चय हुआ। और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ्य के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा। मैं इस विषय का उपयोग करना चाहता हूँ, वह चिंता करता है और क्या आप करते हैं? जब वो यहाँ धरती पर था तो उसने लोगों की चिंता की। मेरे मन में विचार उठने लगा प्रचार करने या बीमारों के लिए प्रार्थना करने से ठीक पहले, यह जानते हुए कि प्रार्थना की पंक्ति किस प्रकार की होगी जो हमारे पास होगी। मैं पहले और इस दृष्टिकोण के लिए सभा के लोगों को विश्वास से अभिषेकित होना अवश्य है। आप यदि आपके पास विश्वास नहीं है तो वहाँ प्रार्थना करने के लिए आने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि ये आपके विश्वास को और मेरे विश्वास को एक साथ लेगा। मेरा विश्वास उस पर भरोसा करने के लिए, आपका विश्वास उस पर भरोसा करने के लिए। इसलिए हम इसे ना भूलें। जब मैं आगे बढ़ता हूँ, हमारे पास कुछ तो स्पष्ट रूप से होना है, प्रमाण के साथ हमें कुछ स्पष्ट रूप से प्राप्त करना होगा। मेरा मतलब है कि हम जो भी करने की कोशिश कर रहे हैं उस पर हम अपने विश्वास की बुनियाद को रख सकते हैं, क्योंकि यदि कोई भी मनुष्य पर्याप्त विश्वास के बिना कुछ भी करने के लिए चाहता है तो वह विफलता के लिए बाध्य होगा, लेकिन यदि वो पर्याप्त विश्वास के साथ पहुंच सकता है तो वह सफल होने के लिए बाध्य है, यदि वह परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है और इसे करने के लिए उद्देश्य है। अब मैं उसकी ओर ध्यान देने के बारे में सोच रहा था कल शाम को, लेकिन अनूठे तरीके से मैं पवित्र आत्मा की अगुवाई में था जब मैं कुछ लोगों के लिए रुका हुआ था कि वे आकर भाई वुड की सहायता करें ताकि एक खींचने वाली गाड़ी को इसमें डालें जिसे उसने अपने ट्रक के पीछे बनाया था। मैं नहीं जान पाया था कि मैं अपने अच्छे मित्र भाई इवांस को क्यों खोजने की कोशिश कर रहा था, और मैं निकल पड़ा महामार्ग की ओर जाना आरंभ किया। मेरी पत्नी और परिवार जो यहाँ पीछे बैठे हैं, वे जानते हैं कि यह सच है, और लेकिन अनूठे तरीके से मैं पीछे मुड़ गया और एक स्थान पर वापस चला गया जो एक होटल था। और ओह, यह मेरे हृदय को कितना रोमांचित कर देता है यह देखकर कि मेरे बहुत सारे मित्र वहाँ लगभग 2 मिनट में वहाँ इकट्ठा हो गए, इतना तक कि इससे रास्ता जाम हो गया था, कारें अब और वहाँ से गुजर नहीं सकती। बस सच्चे मित्र जो सैकड़ों मील की दूरी से गाड़ी चलाकर आए थे, जॉर्जिया और टेनेसी और अलबामा और हर कहीं से, बस एक सभा को सुनने के लिए। तब मेरे मन में एक बात आ गई, तो मुझे उन लोगों को क्या प्रचार करना चाहिए, यह जानते हुए कि न्याय के दिन में मैं जो उन्हें कुछ भी बताता हूँ उसके लिए मुझे जवाब देना होगा, और मैं भी इस महान जीवन का प्रेमी हूँ जो आने वाला है, और मैं वहाँ होना चाहता हूँ। और फिर अनूठे तरीके से मैं एक ऐसे स्थान पर चला गया जहाँ मैंने एक अजीब से मोड़ को लिया। वहाँ मुड़ने के बजाय मैं एक मोड़ लेने के लिए चला गया। वहाँ पर कुछ प्यारे से जोड़ों पर प्रकाश चमका, दो भली युवा महिलाएं जिन्हें मैंने दो भले युवा सेवकों से विवाह करवाया था। और शैतान जब उसने सेवक को देखा, उनमें से एक ने अपनी सेवकाई को स्थापित किया है और उसने यहाँ इस वेदी पर एक जीवन को साथी बनाया। वे अपने हनीमून पर खुशी खुशी से गए थे और शत्रु ने इस जवान पुरुष को पकड़ लिया। और मैं इसे व्यक्त करने के लिए कह रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ क्या वह चिंता करता है, कुछ भी हो विश्वास के साथ यह नहीं को नहीं लेगा। वे मुड़कर और वापस यहाँ लौट आए, जानते हुए वे वहाँ बहुत ही दूर थे, पूर्व दिशा में यहीं कहीं पर वे उनके हनीमून पर थे। वे वापस लौट आए और बैठे हुए इंतजार कर रहे थे, और मैं चलकर गया। वो भला सुंदर नौजवान पुरुष, उसकी पत्नी बाहर बैठकर रो रही थी, वो और उनके छोटे साथी वहाँ पर बैठे थे, और एक और व्यक्ति और दूसरा वो दूसरा भाई वहाँ दौड़कर आ रहे थे जो इस नौजवान पुरुष का मित्र था। कहने लगा, ओ भाई ब्रैनम, ऐसा और ऐसा घटित हुआ है। वहाँ पर गया और वहाँ देखा इस सुंदर नौजवान पुरुष को वहाँ बैठा हुआ देखा। बस वो अपने जीवन के शिखर पर था, नौजवान पुरुषों का एक अगुवा वहाँ बैठा हुआ, और शैतान ने उसे बांध दिया था। उसने कुछ भी ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैंने अपने बाएं हाथ से उसके दाएं हाथ को मिलाया यह देखने के लिए कि क्या वो किसी बीमारी से पीड़ित था, लेकिन वहाँ कंपन का कोई चिन्ह नहीं था। कमरे से सीधे बाहर निकलकर प्रार्थना और उपवास के लिए चला गया और प्रभु पर रुका हुआ था। पवित्र आत्मा का अभिषेक वहाँ पर था, और यही कारण है कि इसने हमें नेतृत्व किया। देखो, और तब उसके ऊपर अंधकार की छाया दिख रही थी। मैंने कभी भी नहीं बताया कि मैं क्या कर रहा था, लेकिन कुछ ही क्षणों के समय के अंदर ही यह सब चला गया था। उसके हाथों का ठंडापन चला गया था। कुछ ही मिनटों में अपने आप को ऐसा देखकर वो चिल्ला रहा था और परमेश्वर की स्तुति कर रहा था, और वे ठीक यहाँ आज सुबह सभा में लोगों के बीच बैठे हुए हैं। देखो कैसे शैतान उस नौजवान पुरुष को परेशान करने की कोशिश कर रहा था, उसे कुछ जटिल बातों को बता रहा था ताकि उसे वापस विकसित करे, जिसे पवित्र आत्मा जानता था, और मैंने इसे प्रभु के दर्शन के द्वारा देखा। लेकिन परमेश्वर ने उस मनुष्य की चिंता की, परमेश्वर ने उस जवान लड़के की चिंता की। बस कुछ ही समय पहले वो एक महिला आ रही थी, मैं उसे यहाँ गलियारे में बैठा हुआ देखता हूँ। उसे बस एक किसी तरह से सीट मिल गई थी और वो वहाँ बैठ गई। उसने कहा, 9 वर्ष से भाई ब्रैनम मैंने आपको पाने की कोशिश की है। और उसने कहा, मैं बहुत ही व्याकुल हूँ, मैं यहाँ देर से आई थी और प्रार्थना पंक्ति में होने के लिए एक प्रार्थना का कार्ड भी नहीं मिला। बिली, जाहिर है उसे यह देखने का आदेश मिला है कि मैं चिंता नहीं करता हूँ, वो मुझे अंदर और बाहर ले जाता है। बिली के लिए बुरा अनुभूति न करें, उसे यह ट्रस्टी बोर्ड के द्वारा ऐसा करने का आदेश मिला है, और यदि वो नहीं करता तो मैं प्रार्थना पंक्ति तक नहीं पहुंच सकता हूं, यहां नहीं आ सकता हूं। आप इसे समझते हैं। देखें, जो भी हम कर रहे हैं उसके लिए एक व्यवस्था होनी है, हमारे पास ये होना चाहिए। देखो, लेकिन वो कहता है, आइए पिताजी जल्दी करें। ऐसे वो महिला वापस चली गई और उसने कहा, भाई ब्रैनम मुझे आपसे कुछ बात करना है। वो वहाँ खड़ी थी, इस भली दिखने वाली युवा महिला के लिए एक दर्शन सामने आ गया और देखा कि उसके हृदय में बोझ था और वो एक जीवित रहने के लिए काम को करने की कोशिश कर रही थी। और एक महान बात पहले घटित हुई, बहुत पहले उस महिला के माता पिता के समय में, जिसने इस महान बात को उसके लिए होने का कारण बना दिया। और प्रभु यीशु ने इसे प्रकट किया और दिखाया कि यह क्या था, और वहाँ कुछ ही पल के समय में इसे महिला से ले लिया गया था। वह आनंद करती हुई चली गई और अब वो हमारे साथ सभा के बीच बैठी हुई है, आनंद के आंसुओं के साथ, जब वो उसके आंसुओं को पोंछ रही है, यह जानते हुए कि उस चीज की सच्चाई ज्ञात हो गई है। और वो बेचारी छोटी महिला, नसों की बीमारी, न्यूरोटिक से पीड़ित, जो बहुत ही परेशान थी, वो नहीं जानती थी कि वह खुद से क्या कर सकती है, और सोच रही है कि वो जा चुकी है और कोई भी पवित्र आत्मा नहीं था, और यह उसका आखिरी दिन है, और उसने 9 वर्ष तक कोशिश की थी और वह निराशा के अंत पर थी। परमेश्वर ने उस छोटी महिला की चिंता की, जिसके लिए किसी एक ने चिंता नहीं की। देखा, क्या ही समय है वो चिंता करता है। जब वो यहाँ धरती पर था, जैसा कि मैंने कहा, उसने लोगों की बहुत अधिक चिंता की, इतना तक कि उसने उसके बीमारों को चंगा किया, उनके हृदय को सांत्वना दी, उन्हें एक स्थान के बारे में बताया जहाँ वो जाकर उनके लिए तैयार करेगा, और फिर से वापस आकर उन्हें अपने निमित्त लेकर जाएगा। उसने उनकी चिंता की, और ध्यान दें, इतना तक वो जानता था कि उसे जाना ही है हमारे पास इस महान चीज को लाने के लिए। तो उसने कहा, मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा, लेकिन मैं पवित्र आत्मा को भेजूंगा और वो मेरी चिंता को निरंतर तुम्हारे लिए करेगा जब तक वो वापस नहीं आ जाता। यीशु की तरह कोई भी चिंता नहीं करता है, यह जानते हुए कि एक महायाजक के रूप में उसका शरीर वह एक बिचवाई के काम में है, जिसे वो अब कर रहा है। एक बिचवाई के लिए उसका शरीर हर समय परमेश्वर की उपस्थिति में होना ही है, कि परमेश्वर पापियों के पाप को देख नहीं सकता है, वह केवल अपने ही पुत्र का लहू देखता है। और ये जानते हुए उसने पवित्र आत्मा को वापस अपने लोगों को सांत्वना देने के लिए भेजा। क्या वह चिंता करता है? निश्चय ही वह चिंता करता है। अब उसे लोगों के लिए निरंतर चिंता करना था, उसके लोगों की जो यहाँ धरती पर थे, उसी तरह से जैसे उसने चिंता की थी जब वो यहाँ था, क्योंकि उसने संत योहन्ना 15वें अध्याय में कहा था, यदि आप चाहते हैं, मैंने यहाँ इन वचनों के साथ लिख कर रखा है जहाँ मैं इसका जिक्र कर रहा हूँ, संत योहन्ना 15:26-27। मैं देखता हूँ कि आप में से बहुत से लोग वचनों को लिख रहे हैं, इसलिए मैं इसका हवाला दे सकता हूँ। यदि आप इस वचन को नहीं जानते हैं, बहुत सी बार ऐसा होता है, मैं वचन को लिख कर रखता हूँ, तब मुझे पता होता है कि मैं यहाँ से क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि ये हमेशा ही प्रभु के वचन में होता है। देखा, उसने कहा, जब पवित्र आत्मा आता है, जिसे पिता उसके नाम से भेजता है, वह उसकी गवाही देगा। दूसरे शब्दों में, वह उन्हीं कामों को करेगा जो उसने किया था। पवित्र आत्मा एक भवन में से होते हुए काम को करता है, जिसे उसने पवित्र किया था, उन्हीं कामों को करेगा जो उसने किया था। अब उसे हमारे लिए क्या करना चाहिए? तब हम जान जाते हैं कि आज ठीक हमारे बीच में हमारे पास पवित्र आत्मा के रूप में वही सांत्वना देने वाला प्रभु यीशु है। एक दूसरे कार्यस्थल से परमेश्वर स्वयं काम कर रहा है। वह इसराइल के लिए एक सहायक था जब वे ऊपर देखते और आग के स्तंभ को देख सकते थे और यहाँ भविष्यवक्ता के उन शब्दों को बोलते हुए सुनते थे जो सत्य थे और परमेश्वर ने इसे प्रमाणित किया था। वह उनका सहायक था जब वो धरती पर मनुष्य के रूप में था, तब वो एक सहायक था। परमेश्वर देहधारी हुआ, परमेश्वर स्वयं का प्रतिबिंब कर रहा है और स्वयं को एक मनुष्य के जरिए व्यक्त कर रहा था, मसीह यीशु, जिसने प्रतिज्ञा की थी, जो काम मैं करता हूँ तुम भी करोगे। और मैं पिता के पास जाता हूँ और वापस पवित्र आत्मा को भेजने जा रहा हूँ, जो कि मैं आत्मा के रूप में होऊंगा और मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारे अंदर रहूंगा, और वही काम जो मैंने यहाँ किया है पवित्र आत्मा फिर से मेरे नाम में करेगा जब वो आता है। देखा, यही कारण है कि उसने कहा इसके विरोध में बोलना प्रायश्चितता पहले से ही की जाने के बाद अब यह न क्षमा करने वाला पाप है, पवित्र आत्मा की निंदा करना। और वो इसे उसी तरह से करेगा ताकि हम जान जाएं क्या यह किसी संसारिक दृष्टिकोण से सहायक हो, चाहे हम जानते हो कि यह सहायक था कि कोई बुजुर्ग व्यक्ति जो हम पर अपनी बाहों को डाल सकता हो और हमें थोड़ा गले लगा सकता हो और हमें अच्छा महसूस करने को लगा सकता हो, या एक संप्रदाय के कुछ धार्मिक सिद्धांत के तंत्र जो कहते हैं अब तुम हमसे संबंधित हो और ये हमारे पास है और उनमें के बाकी उनके साथ संबंध मत रखना क्योंकि उनके पास ये नहीं है। उसने इसे निश्चित ही सीधे सीधे किया। देखो, वो मेरे नाम में बोलेगा, जो काम मैं करता हूँ वह भी करेगा जब वो तुम पर होगा। देखो, वह उसी तरह से सहायक को देगा हमारे सारे पापों को क्षमा करने के द्वारा, हमारी सारी बीमारियों को चंगा करके, और हमसे एक राज्य के सहायक के लिए बात करते हुए जो आने वाला है।
देखो,
खुद को हमारे बीच साबित कर रहा है, जैसे परमेश्वर ने खुद को यीशु मसीह के द्वारा हमारे बीच साबित किया था। और दूसरा तीमुथियुस में, पहला तीमुथियुस 3:16, यह इस तरह से लिखा गया है, परमेश्वर के बारे में जानना और इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ, हमने परमेश्वर को देह में देखा। जो परमेश्वर का सहायक था, यह जानकर कि वह इतना नजदीक आ गया था, उसने हमारी चिंता की, इतना तक कि वह हम में से एक बन गया। परमेश्वर देह में प्रकट हुआ, न ही एक दूसरा व्यक्ति बल्कि खुद परमेश्वर। और अब इसे एक और कदम नजदीक बनाने के लिए वह पवित्र आत्मा को हमारे सहायक होने की चिंता करने के लिए भेजता है और वो हम में बना रहता है। ओह, वो चिंता करता है। अब हमें यहाँ वचन के दूसरे भाग पर जाना होगा या इसे आधार देने के लिए एक और विचार को लेना होगा। इससे पहले मैं जाऊँ, मैं यह कह सकता हूँ हर किसी के पास यह सहायक नहीं है, उनके पास यह नहीं है। सो उनके पास यह नहीं होने का जो कारण है क्योंकि वे इसे स्वीकार नहीं करते हैं। ये उनके लिए है लेकिन वे इसे स्वीकार नहीं करते हैं। अब मैं आशा करता हूँ कि आप आध्यात्मिक रूप से इतनी समझ रखते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। देखा, मैं उन झुंड के लोगों से बोल रहा हूँ जिनके लिए कुछ मिनटों में प्रार्थना की जानी है, और हमारे पास पवित्र आत्मा में यह सहायक है जिसे सहायक होने के लिए भेजा गया है, लेकिन सभी लोग इसे प्राप्त नहीं करेंगे, वे इसमें विश्वास नहीं करते हैं, समझे। वे ऐसा करने के लिए फिर वे उनके सहायक के लिए कुछ अन्य साधनों को जुटाते हैं, कुछ अन्य जरियों से अपना सहायक होने के लिए एकत्र करते हैं। यदि वे परमेश्वर के ठहराए हुए सहायक को स्वीकार नहीं करते हैं तो उन्हें कोई और सहायक को लेना है। देखा, क्योंकि आप इसके बिना नहीं जी सकते हैं, कोई तो जीने के लिए होना है। और मैं आशा करता हूँ कि आप में से प्रत्येक को वो मिल जाए, विशेष रूप से आप लोग जिन लोगों के लिए प्रार्थना की जानी है जो आज सुबह बहुत तकलीफ में है, शायद ऐसी परेशानियों के साथ हैं जिसे डॉक्टर छू भी नहीं सकते हैं। हम विश्वास करते हैं कि डॉक्टर लोगों की सहायता करते हैं। मेरा मानना है कि परमेश्वर दवा के द्वारा चंगा करता है, परमेश्वर शल्य चिकित्सा के द्वारा चंगा करता है, परमेश्वर समझने के द्वारा चंगा करता है, परमेश्वर प्रेम के द्वारा चंगा करता है। बस जरा सा प्रेम एक लंबा रास्ता तय करता है। किसी को सारी परेशानी होने दो और बस आप उन्हें दिखाएं कि आप उनकी चिंता करते हैं। समझे, परमेश्वर प्रेम के द्वारा चंगा करता है, परमेश्वर प्रार्थना के द्वारा चंगा करता है, परमेश्वर अद्भुत कार्यों के द्वारा चंगा करता है, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा चंगा करता है, परमेश्वर चंगा करता है, जो भी स्तोत्र है परमेश्वर इसके द्वारा चंगा करता है। यह परमेश्वर है जो चंगा करता है, क्योंकि उसने कहा मैं प्रभु हूँ जो तेरे सारे रोगों को चंगा करता हूँ। तो यह सब एक साथ काम करना चाहिए और मनुष्य जो भिन्न भिन्न सेवकाई में है इसके लिए एक साथ काम करना चाहिए। देखा, अब लेकिन वे ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि वे कभी कभी वे परमेश्वर के वचन की कुछ बातों पर खड़े होने के लिए मना कर देते हैं, क्योंकि उनके कुछ संप्रदायों ने उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं दी है। लेकिन यह सत्य को नहीं रोक सकता है, यह उसी तरह से है, परमेश्वर ठीक उसी तरह से चंगा करता रहता है। इसलिए वे किसी अन्य संसाधन से सहायक को खींचने की कोशिश करते हैं। आइए पहले प्राण के लिए बोले, हम पाते हैं कि बहुत से लोग शराब पीने के द्वारा सहायक को पाने की कोशिश करते हैं। आप जानते हैं, हमारे पास कुछ ऐसी कहावतें हैं जो आज हमारे बीच बहुत अच्छी तरह से जानी जाती है, कि कई सेवक लोग पुलपिट पर जाने से कुछ समय पहले शराब पीते हैं, नशे का एक बहुत ही भारी जाम पीते हैं। ऐसा मंच पर सेवकों को देखकर जाना जाता रहा है, यहाँ तक वे शराब के प्रभाव में डगमगाने लगते हैं। और ऐसा नहीं होना चाहिए, यह नहीं होना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि कई बार हम उस व्यक्ति को दोष दे सकते हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें पहले यह देखना चाहिए कि समस्या क्या है। उनमें से कई जन शराब पीने से परिवर्तित हो गए थे, और हम देखते हैं यदि वे उस परिस्थिति में थे तो यह एक अपमानजनक और निंदनीय है। लेकिन ये झूठ बोलना, चोरी करना, या महिलाओं के प्रति व्यभिचार करना, या कुछ अन्य चीज की तुलना में अधिक निंदनीय नहीं होगा। देखा, और हो सकता है कि एक मनुष्य उच्च उत्साहिता में जन्मा हो और इन आधुनिक अधनग्न वस्त्रों को डाले हुए देखता है, और वो लगातार परेशानी में रहता है। देखा, वो मनुष्य उसी तरह से जन्मा है। अब उसे क्या करना चाहिए? वो सेवक जो शराब पीता है, या वो महिला जो धूम्रपान करती है, या जो अनैतिक रूप से वस्त्र को पहनती है, वह पूरी तरह से खुद को सहायक देने की कोशिश करती है, जिससे वह चाहती है कि इस कारण पुरुष उसकी ओर देखें। इसके अलावा कोई और कारण नहीं है, वह आंशिक रूप से पागल है। देखा, कोई भी समझदार महिला जानती होगी कि पुरुष के सामने खुद को निवस्त्र नहीं करना चाहिए, जिसके पास उसका सही दिमाग है। देखा, इसके लिए कोई कारण है ही नहीं। और वो महिला, लेकिन वो करने की कोशिश कर रही है। ये युवा लड़कियां आज सड़क पर बाहर निकलती हैं, वे वास्तव में तो आप हाव भाव के लिए बहाना करते हैं। याद रखें, यह टेप न केवल यहाँ इन लोगों के लिए है, ये संसार भर में जाता है। देखा, और एक स्त्री जो उसके खुद वस्त्रों को निकालती है, क्योंकि वह जानती है कि ये गर्मी है, और वहाँ सूर्य की गर्मी में निकलती है नग्न, और फिर कुछ ही कपड़ों को पहनकर बाहर निकलती है, और जो सबसे ठंडे होते हैं। वे इंडियन लोग वहाँ पेपेगोस और नवजोस में, विशेष रूप से पेपेगोस में, और वहाँ रोग होने के कारण वे महिलाएं उनके चारों ओर बड़े सूत के कंबल को लपेटे हुए बाहर निकलती है, और ठंडा रखने के लिए सूर्य की गर्मी में बाहर बैठती है। क्यों? उनका पसीना बहने लगता है, और जो हवा उड़ती है वो वातानुकूल को तैयार करती है। आप देखें, और इन महिलाओं के पास कोई और कारण नहीं है, लेकिन बस वे यह नहीं जानती हैं, उन्हें इसका एहसास नहीं है। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि वे करती हैं, उनमें से बहुत सी भली महिलाएं हैं, और मैं यह असभ्य होने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं इसे उन्हें जगाने की कोशिश करने के लिए कह रहा हूँ। देखा, यह तो केवल शैतान ही है। देखो, आप दूसरे यौन वर्ग को अनुभूति करवाती हैं, पुरुष वर्ग इस तरह से देखे, उन पर इतना प्रभाव हो, जब तक कि वे अपने टायर से चूचू आवाज न निकालने लगे, और भेड़ियों की सीटी को न बजाने लगे। और वे इसके लिए क्या करती हैं? वे महिलाएं ऐसा करती हैं, जिससे ये पुरुष ऐसा करें। तुम दिन के गर्मी में और दोपहर के 4 बजे क्यों बाहर निकलती हो घास को काटने के लिए, जब लोग अपने काम से वापस आते हैं, और इसी तरह से इत्यादि चीजें। यह दिखाता है कि यह पागलपन की आत्मा है। और मैं जानता हूँ कि हो सकता है उनमें से कई लोगों का बुद्धि का स्तर मेरी तुलना में कुछ लाख मील अधिक हो, लेकिन मैं आपके बुद्धि के स्तर को वचन के साथ परीक्षण करता हूँ, और देखूंगा कि यह कहाँ तक आता है। देखा, यह आधुनिक बुद्धि का स्तर है, लेकिन वही प्रमाण और जीवन के फल साबित करते हैं, तो वे इस बात के साथ सहायक को ढूंढने की कोशिश करते हैं। उनमें से बहुत से कहते हैं, देखो मैं ऐसा नहीं करता हूँ, लेकिन आपके ऐसे कपड़े पहनने से अपने आप में ऐसे लुभाते हैं, इतना तक कि वो और अधिक आधुनिक बनने की कोशिश न कर ले। कलीसिया के पास बैठी हुई इस महिला की तुलना में अगली सुबह एक और अच्छी टोपी को पहनती हैं, या कुछ और बेहतर कपड़े, क्योंकि आप इसे करने के लिए खर्चा कर सकते हैं। देखा, देखो पाप नीचे तक चला गया है, और वे ऐसा करके सहायक को ढूंढने की कोशिश करते हैं, और उनके पास ये एक ऐसी चीज बन गई है, इतना तक इसने पूरी तरह से समूचे राष्ट्र को प्रभावित किया है, न केवल राष्ट्र को बल्कि समूचे दुनिया को प्रभावित किया है। बहुत सी चीजों को मैं यहाँ बोल सकता हूँ, लेकिन समय बचाने के लिए चंगाई की सभा होने वाली है, मैं इस पर बहुत विस्तार पूर्वक बोल सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं करूँगा। मुझे पक्का है कि आप समझेंगे कि मेरा क्या मतलब है। इसने राजनीतिक संसार, राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, राष्ट्र का नैतिक जीवन, संसार भर के लोगों को प्रभावित किया है। ये एक ऐसे स्थान तक पहुंच गया है, इतना तक कि एक व्यक्ति राजनेता बनना चाहता है, सिर्फ नाम का राजनेता होने के लिए बहुत सारा पैसा मिलता है, वोट को खींच सकता है, और ऐसा करने के लिए वोट की मशीनों को किराए पर लेता है, और इत्यादि, सिर्फ नाम के लिए, और लाखों डॉलर के मालिक बने। देखे, बस कुछ नाम के बड़े राजनेता होने पर उस पर इतना काफी है। आप जानते हैं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। और सामाजिक जीवन, लोग इस पागलपन के सामाजिक जीवन में एक साथ होने की कोशिश करते हैं। मुझे मत बताना कि संसार पागल नहीं है, और जिस तरह से करने के लिए कह रहा है, यह निश्चय ही पागल है। निश्चित रूप से यह एक पागलपन का संसार है, और परमेश्वर के अनुग्रह से ही हम इससे बचेंगे। ध्यान दें, इस सामाजिक जीवन में लोग एक ऐसे स्थान पर आ चुके हैं कि वे छोटे छोटे कुलों, जातियों को सामाजिक बनाते हैं। वे वहां आते हैं और सोचते हैं हम उस अगले झुंड से बेहतर हैं, समझे, और ये इसे बस इसी तरह से किया गया है। और ये नैतिकताएं हैं, यह लोगों की नैतिकता को ठेस पहुंचाती है, इतना तक कि ईमानदार मित्रों को मैं यहाँ तक ये विश्वास भी नहीं करता हूँ कि संसार इस नैतिकता शब्द इस देश के 90% लोगों के बीच में पहचाना गया है। वे यहाँ तक जानते भी नहीं कि संसार नैतिकता शब्द का क्या अर्थ है। यह उनसे बाहर आ चुका है, और इसने इसे बहुत ही चालाकी से किया है। शैतान बहुत ही कपटी है, देखिए, और वो इसे इतनी आसानी से करता है, बहुत ही कपटी है, बस थोड़ा बहुत, जरा सा यहाँ और थोड़ा सा वहाँ करता है, और इसे छोड़ देता है। उसके पास बहुत समय है, इसलिए वो थोड़ा यहाँ और थोड़ा सा वहाँ काम करता है, और सबसे पहली बात, आप जानते हैं, लोग बस धीरे धीरे इसके अंदर आ गए हैं। एक महिला के साथ क्या हुआ होगा, जब मैं 16 वर्ष का लड़का था, यदि वे ऐसे सड़क पर चली जाती जैसे वो आधे वस्त्र के रूप में आज निकलती है, क्यों, वे उसे जेल में डाल देते थे। जो भी हो, यदि ये गलत था तो ये अब भी गलत है, समझे, लेकिन आप देखें, शैतान ने बस इस कट को और छोटा करना आरंभ कर दिया है, और उन्हें नीचे से कम करता जा रहा है, और ऐसा होगा कि कोई तो व्यक्ति और थोड़ा नहाने के वस्त्रों को छोटा करेगा, या आप जो भी उन चीजों को कहकर बुलाते हो, एक अंजीर के पत्ते की ओर वापस जा रहे हैं। आपको याद होगा, यह सही बात है, यह ठीक सीधा पीछे चले जाएंगे, और यही है, ये अब वास्तव में प्रकट रूप में कार्य में है। और अब हम देखते हैं, ये सारी चीजें इसलिए हैं क्योंकि लोग सहायक को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, वे कुछ तो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और याद रखें, आपका सहायक आपका धर्म है, और आप उन चीजों को अपना धर्म बनाते हैं। देखा, इसे समझते हुए क्या ही दया आती है कि मृत्यु ठीक आपके सामने है, समझे, जब तक ऐसा घटित नहीं होता है, जब तक ऐसा दिखाई नहीं देता कि वहाँ राष्ट्र में कोई एक ठोस बुनियाद नहीं बची हो जिस पर कुछ भी बनाया जाए। अब मैं आपसे कुछ पूछूंगा, आप कुछ भी विश्वास नहीं कर सकते हैं, मुश्किल से बाइबल को छोड़कर, हमारे पास अभी भी मसीह है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। देखा, आप किसी चीज पर भी विश्वास नहीं कर सकते हैं। आप चालू करते हैं, उदाहरण के लिए, जब आप अपने टेलीविजन को चालू करते हैं, आपके पास ऐसा होता है, और जब आप अपने टेलीविजन को चालू करते हैं और व्यावसायिक विज्ञापनों को देखते हैं, तो यदि एक व्यक्ति उन 100 व्यावसायिक विज्ञापनों के द्वारा जीने की कोशिश करता है, आप तो एक सप्ताह में ही मर जाएंगे। देखो, आप इसे नहीं कर सकते, और बिल्कुल वही चीज कोई कंपनी लेकर आएगी, जैसे कोई एक उत्पादन को, और कहती है यहाँ यह बात है और यहाँ पर उसके पास यह एक चीज नहीं है, और वही कंपनी उसी उत्पादन को बेचती है। उसके बाद एक और व्यावसायिक विज्ञापन आ जाएगा, इसे इस तरह से ले न कि उसे, और यह वही कंपनी है। अमेरिकी लोग इस तरह की बातों के लिए फंस जाते हैं, जब तक कि सारी चीज एक सड़ावट नहीं बन जाती, जब तक कि कोई आशा ही नहीं रहती। कोई भी नहीं जानता कि क्या विश्वास करना चाहिए, लेकिन मैं थोड़ी देर के बाद आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या विश्वास करना है। यदि आप सहायक को चाहते हैं, यदि परमेश्वर की इच्छा है, तो लोग वे झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, चोरी करते हैं, इतना तक कि आपको लगभग किसी से $5 उधार लेने के लिए भी ऋण पत्र को बनाना पड़ता है। यह एक, आप जानते हैं, बाइबल ये कहता है कि अंतिम दिनों में चुने हुए लोगों के बीच के अलावा कहीं भी प्रेम नहीं होगा। यह सही है, वचन उस बारे में बताता है कि पति पत्नी के विरोध में होगा, और पत्नी पति के विरोध में, बच्चे माता पिता के विरोध में होंगे। केवल चुने हुए लोगों में वहाँ किसी तरह से प्रेम बचा होगा। कलीसिया को सामाजिक जीवन के अंदर वही चीज मिलती है, उन्होंने इसे कलीसिया में लेकर आया है, उनका सामाजिक जीवन और उनकी राजनीतिक और उनकी अन्य चीजों को लाया है, इतना तक कि उनके पास कलीसिया में इतनी गड़बड़ है कि वे नहीं जानते कि क्या करना चाहिए। उन्होंने राजनीतिक को कलीसिया के अंदर लाया है, उन्होंने सामाजिक जीवन को भी लाया है कलीसिया में, उनका सामाजिक जीवन, उनकी सामाजिक गतिविधियों को, बिंगो या बंगो, नृत्य को, या जो भी वे इसे कहकर बुलाते हैं, और ये भोज को करना और नृत्य करना और इत्यादि प्रभु के भवन में लेकर आते हैं। क्यों? यह एक दयनीय बात है। वे कहते हैं तो अब ऐसा नहीं है, यह हड़प करने पर होता है। याद रखें, यह भी हड़प करना था, जिन व्यवसाय करने वालों को यीशु ने उनके व्यापार के साथ मार भगाया और कहा, ऐसा लिखा है, मेरे पिता के घर को प्रार्थना का घर बनाना, और तुमने इसे डाकुओं की खो बना दिया है। देखा, यह गलत है। मैं परवाह नहीं करता कि यह कहाँ पर है, जब तक कलीसिया कोई बड़ी इमारत नहीं है, यह तो इमारत में लोग हैं, और यदि वे लोग इसमें ऐसी सोच को रखते हैं, तो यह गलत है, और उन्होंने उस व्यवसाय को लाया है। अब हम देखते हैं कि कलीसिया भी हमेशा कुछ प्रतिज्ञा को करती है, जैसे टेलीविजन और इत्यादि, जो उन्हें कभी भी नहीं मिलती है, जो वे प्रतिज्ञा करते हैं। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, एक पुराना हवाला, मनुष्य हमेशा ही परमेश्वर की स्तुति करता है, जो कुछ परमेश्वर ने किया उस बात के लिए परमेश्वर की स्तुति करता है। परमेश्वर जो करेगा, आगे की ओर देखते हैं कि वह क्या करेगा, और उसके बाद वह जो कर रहा है उसे अनदेखा कर देता है। देखो, वे चूक जाते हैं, और इसी तरह से कुछ समय के बाद वे इतिहास बन जाते हैं, इतने दूषित बन जाते हैं, देखो, क्योंकि वे अब पहचानने में चूक गए हैं। आप एक बार सहायक मसीह के बारे में बात कर सकते हैं और कह सकते हैं कि वो आने वाले युग में एक सहायक को देगा, लेकिन वे एक बार दिए गए सहायक से इनकार करते हैं जो अब यहाँ उनके पास उनके लिए है। देखा, यह उसी आधार पर है जिसे हम देखते हैं। तो यह एक महान चीज बनती है। अब पता लगाते हैं कि ऐसा ही पेंटिकॉस कलीसियाओं में भी बन गया है, ये पेंटिकॉस क्षेत्रों में बन गया है, कि वे हमेशा ऐसा ही कुछ तो प्रतिज्ञा करते हैं जो उन्हें कभी नहीं मिलता है। ये हमेशा ही होता है कि हर एक व्यक्ति के पास एक अलग ही सनसनी की अनुभूति होती है, और यह बना देती है कि यह वचन के अनुसार है या नहीं, और वे ऐसा कुछ करने का प्रतिज्ञा कर रहे हैं जिसे वे पाने के लिए कुछ भी नहीं करते हैं, जब तक ऐसा नहीं दिखाई देता है, जैसे ये कोई एक स्थान पर पहुंच गया हो, इतना तक कि ऐसा नहीं दिखाई देता कि कोई कण भर भी इसमें सच्चाई है। लोग सच्चाई के उस सच्चे तत्व पर नहीं उतरते हैं। इसने अंग्रेजी के उसी शब्द सिंसियरिटी, सच्चाई ने लोगों के लिए उसके मूल्य को खो दिया है, या लोगों के जीने के तरीके के द्वारा इसने उनके लिए इसकी सच्चाई को खो दिया है। अब वे इसे समझते हुए नहीं दिखाई देते हैं, यहाँ तक कि हमारा अंगीकार करना। अब मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो आ रहे हैं या आते हैं या टेप पर, मैं चाहता हूँ कि आप इस हवाले को एक पल के लिए अब ध्यान से सुने। ये जब तक आप गंभीर रूप से सच्चे नहीं होते हैं और आप तब तक सच्चे नहीं हो सकते हैं जब तक आपकी सकारात्मक समझ नहीं होती है। यदि आप अनुमान लगा रहे हैं या अंदाजा लगा रहे हैं या ऐसी आशा कर रहे हैं, इसलिए तब यह सच्चाई की गहराई नहीं हो सकती है जिसकी परमेश्वर मांग करता है। यह विश्वास ऐसा नहीं है आशा करता हूँ या यह सही हो सकता है, यह पूरी तरह से आमीन होना चाहिए। यह आपका सर्वश्रेष्ठ है, यह आपका परम सत्य है, यह वो चीज है जिससे आप जुड़ गए हैं। देखा, आप अपने अंतिम पर आ गए हैं, यह वो सच्चाई है और वहाँ यह सच्चाई के अलावा कुछ भी नहीं है, यह इसी प्रकार से होना ही है। और फिर जब आप इसे अपने मन में महसूस करने लगते हैं, तब आप उस तक पहुँचने के लिए आप अपने पूरे जीवन प्राण शरीर में जुट जाते हैं। जो कुछ भी आप में है बस इसके लिए वो सब पूरी तरह से बेच देते हैं। जैसा कि यीशु ने बहुत ही शालीनता पूर्वक हमें सिखाया उस मोती खरीदने वाले मनुष्य में, और उसने एक बड़े मूल्यवान वस्तु को देखा और उसने इसे पाने के लिए उसका सब कुछ बेच दिया पूरी सच्चाई से और सब कुछ जो उसके पास था, भले ही वे अच्छे मोती थे, यह एक उसके लिए महत्व रखता है। और जब आप परमेश्वर का सर्वश्रेष्ठ पाते हैं, उसका वचन एक निश्चित चीज के लिए प्रतिज्ञा, आपको पहले जानना ही होगा कि यह परमेश्वर का वचन है, कि वो चीज जिसे आप पूरा होते हुए देख रहे हैं वह परमेश्वर है। वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, ना ही शायद ऐसा हो सकता है या ऐसा दिखाई देता है, ये हो सकता है, यह परमेश्वर है। फिर जब आप उस स्थान पर पहुँचते हैं, तब वो बहुत ही मूल्यवान मोती, आप उस किसी भी चीज से दूर होने लगते हैं जो कोई भी और आपको इसके विपरीत बताता है। आपको यह देखना ही नहीं चाहिए कि मनुष्य क्या हासिल कर चुका है, आपको परमेश्वर को ही देखना चाहिए कि परमेश्वर ने कहा है और उसने क्या प्रतिज्ञा की है, और उसे करते हुए देखते हैं तो तब यह ठीक वहाँ पर आपका सर्वश्रेष्ठ होता है। और फिर वो सब कुछ जो आप हैं, वो सब कुछ जो आप थे, जो कुछ भी आप होने की आशा करते हैं, उसे बस इस पर रखा जाना ही है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हालांकि उस समय पर आपके लिए मृत्यु और जीवन था। मैं सोचता हूँ कि एक चीज जो हमारे लोगों को चंगा होने से रोकती है वो अंगीकार करने की कमी है, वो सच्चाई से अंगीकार करने की कमी है। अब उदाहरण के लिए यह थोड़ा सा बुरा लग सकता है, लेकिन मेरा मतलब इस तरह से नहीं है, लेकिन मेरी पत्नी को यहाँ बैठे हुए देख रहा हूँ। यदि मैं आज यहाँ से बाहर जाकर और अपनी बाहों को किसी और महिला के चारों ओर रखता हूँ और उससे प्रेम करता हूँ, और मैं तब जान जाता हूँ मेरे इस तरह से करने के बाद कि मैं गलत था, बिल्कुल गलत था। अब जाहिर है मेरा सहायक मुझे ऐसा करने से रोक देगा, देखा, समझे? लेकिन मेरा मतलब है, यदि मैंने ऐसे किया और ऐसा हुआ कि मैंने ऐसा किया है या कुछ भी इसके जैसा किया है, और उसके बाद मैं जानता हूँ पहली बात जो मुझे करना है कि मैं अपनी पत्नी से कहूँ, इससे पहले कि मैं परमेश्वर से कहूँ, मुझे क्षमा कर दो क्योंकि मैंने पत्नी के विरुद्ध पाप किया है। यदि आप वेदी पर आते हैं और याद रखें कि आपको पहले जाकर इसे सही करना चाहिए इससे पहले कि आप भेंट को चढ़ाएं, इसलिए मुझे पत्नी के पास जाना होगा। मैं विश्वास करता हूँ कि अंगीकार करने में भी सही करना होता है, यह सच्चा अंगीकार नहीं है जब तक इसे नहीं करते हैं। क्या हो यदि मैं अभी कहूँ मैं इसे अंगीकार करूँगा कि मैंने गलत किया है? मैं कहता हूँ भले प्रभु, मेरे मित्र, आप जानते हैं कि मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूँ, परमेश्वर की स्तुति हो, हालेलुया, मैं सोचता हूँ कि आप एक भले बुजुर्ग मनुष्य है, मुझे क्षमा करें। आप जानते हैं प्राचीन बुजुर्ग मित्र, मेरा उद्देश्य इस तरह से नहीं था, समझे? अब आप कहते हैं ये तोड़ना मरोड़ना है, ऐसा ही है, इस तरह का अंगीकार करना ऐसा ही है। लेकिन यदि मैं कहूँ प्रभु, मेरा ऐसा करने का उद्देश्य नहीं था और आप मेरी सहायता करें और मैं इसे फिर से नहीं करूँगा, वह मेरे बलिदान को अस्वीकार कर देगा जब तक मैं पहले जाकर और अपनी पत्नी के साथ सही नहीं करता हूँ। तो तब क्या हो यदि मैं उसके पास उसी एक अनादर के साथ आता हूँ और कहूँ, कहो मेरी पूर्व प्रेमिका, मेरी पुरानी मित्र, मेरे बच्चों की बूढ़ी माँ और पहली प्रिया, तुम जानती हो कि हम लंबे समय से पुराने साथी रहे हैं। कहो क्या हो यदि मैं अपनी बाहों को दूसरी स्त्री के ऊपर रखूं और तुम इसके बारे में क्या कहते हो? छोटे बच्चों, क्या तुम मुझे क्षमा करोगे? मैं कल्पना करता हूँ कि वह कैसी देखती होगी, वह सोचती होगी मेरे पति को क्या हुआ, समझे? अब पहली बात वो नहीं जानती क्या मैं मजाक कर रहा था या मैं नहीं कर रहा था। और आप इस तरह से अपने साथी या परमेश्वर से अंगीकार करने के लिए नहीं जाते हैं, आप ईमानदारी की गहराई के साथ जाते हैं अपने पाप के लिए ईश्वरीय दुख के साथ। सबसे पहले आपको खेद होना चाहिए, मुझे उसे बताना ही होगा। प्रिय, यहाँ आओ, हमारे बचे हुए विवाहित जीवन के लिए यह बुरा हो सकता है। वो महिला जिसके साथ मैं रहता हूँ वही मेरी प्रियतम है, और मैंने इन सारे वर्षों में तुम्हें कितना प्रेम किया है, लेकिन अब तुम इसके बाद से मुझे छोड़ सकती हो, तुम मेरे साथ नहीं रह सकती हो, तुम मुझे स्वीकार नहीं कर सकती हो, और मैं ये जान रहा हूँ, लेकिन फिर भी इसे सही करने के लिए मुझे सही करना होगा, मुझे उसे अपने हृदय की गहराई से बताना होगा। उसके बाद मुझे परमेश्वर से उसी तरह कहना होगा, और परमेश्वर और पत्नी दोनों को सच्चाई से कहूँगा कि मैं परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा दोबारा नहीं करूँगा। समझे, वास्तव में मत करना। अब मैं इस बात को उसके ऊपर डाल सकता हूँ और वो देखा नहीं देखेगी, हो सकता है उसके लिए मेरे शब्द उसे मना लेंगे, लेकिन मेरे शब्द परमेश्वर को नहीं मनाएंगे। वह मेरे हृदय की ओर देखता है और वह जानता है, और आखिरकार उसके साथ कुछ और वर्ष रहूंगा यदि परमेश्वर अनुमति देता है तो, और हम इस संसार से उठा लिए जाएंगे, लेकिन परमेश्वर के साथ यह अनंत काल है, इसलिए मुझे परमेश्वर के प्रति गहराई से ईमानदार होना चाहिए। और फिर यदि मैं सच्चा हूँ तो वह मेरी सुनेगा, लेकिन यदि मैं सच्चा नहीं हूँ तो मुझे परमेश्वर के समय को बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि वो मेरी सुने। और यही है वो जहाँ आज लोगों के बीच आया है, वहाँ ईमानदारी की गहराई नहीं दिखाई देती है जो कि उनके पास होनी चाहिए। और मैं विश्वास करता हूँ कि एक पुरुष या महिला प्रार्थना के लिए आ रहे होंगे, पहले जो कुछ भी उन्होंने किया है उसे स्वीकार कर लेना चाहिए और हर एक चीज को सही करना चाहिए, क्योंकि आप देखते हैं, आपने ध्यान दिया होगा, मंच पर बहुत सी बार देखते हैं कि वो यहोवा यो कहता वाला वचन कितना दूर होता है। देखा, समझे, वे लोग वो दर्शन का प्रकट होना निश्चित रूप से उनके विश्वास के साथ परमेश्वर ने एक दान के द्वारा प्रतिज्ञा की है, लेकिन चंगाई कुछ तो अलग है। देखो, परमेश्वर तब इसकी पहचान देता है। देखो, अब हम देखते हैं ऐसा है, जो लोग अपना अंगीकार करते हैं उन्हें ईमानदारी की गहराई से आना होता है। मेरे पास यहाँ पर है, ये यहाँ पर लिखा है, मेरे पास इसे पढ़ने का समय नहीं है, लेकिन मैं सोचता हूँ यह बिगमटन न्यूयॉर्क में है और मैंने ये गलत पढ़ा है। जी हाँ, बिंगहामटन, मैं सोचता हूँ यह सही है, वो स्थान जहाँ एडिकॉट जूते की कंपनी है, बिगमटन, मैं सोचता हूँ इसे बिगमटन कहा जाता है, यह सही है, न्यूयॉर्क। हम एडिकॉट जॉनसन जूते की कंपनी के स्थान पर थे, जो एक बड़ा सभागार था, और हमारी वहाँ पर एक सभा हो रही थी, और एक सुबह बिली पॉल मेरे पास वाले कमरे में था, बहुत ही ठंडी हवाएं चल रही थी, और मैंने देखा कि लोगों के बीच ईमानदारी की कमी है, ऐसा दिखाई दिया, और मैं सोचने लगा क्यों? यहाँ पर एक मनुष्य था जो उस रात चंगा होकर वहाँ खड़ा हुआ था, कोई उद्देश्य या एक व्यक्ति के लिए विशेष रूप से मैं बात कर रहा हूँ। वो मनुष्य को एक बड़ी बीमारी थी और वो वहाँ उस रात को खड़ा हुआ था, और हमारे वहाँ जाने से 5 दिन पहले वो बीमारी फिर से उसके पास वापस आ गई। देखा, क्योंकि पवित्र आत्मा की उपस्थिति में इसने उसमें से बीमारी को निकाल दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने उस नौजवान महिला के लिए थोड़ी देर पहले बाहर यार्ड में किया, कल रात नौजवान पुरुष के लिए किया। देखें, लेकिन वहाँ पर एक गहरी ईमानदारी होनी चाहिए यह जानने के लिए कि यह परमेश्वर है जो अब आप में से इसे निकाल सकता है, आप पर उसी अभिषेक के साथ इसे आपसे दूर रख सकता है। समझे, और फिर पवित्र आत्मा ने मुझे एक सुबह, लगभग दिन के उजाला था, उसने बात की और कहा, मंच पर या कहीं तो खड़े हो जाओ और इन लोगों को वहाँ आगे लेकर आओ और उन्हें अंगीकार करने को लगाओ, उन्होंने जो कुछ भी किया है इससे पहले तुम उनके लिए प्रार्थना करो। देखा, ईमानदारी की गहराई, जब तक संसार पश्चाताप नहीं करता है तो उसे नष्ट होना है। देखा, और अंगीकार करना ही आज संसार की आवश्यकता है, ईमानदारी से अंगीकार करना है। ये बीमारी के लिए दवा की तरह है, हम सभी बोतल पर पढ़ सकते हैं कि यह किस प्रकार की दवा है और यह किस बीमारी के इलाज के लिए है, लेकिन आप जानते हैं, निर्देशों को पढ़ना, मैं इसे रखने जा रहा हूँ, यह बाइबल की तरह है, हमारे विद्यालय और धर्म विद्यालय सारे वचन को पढ़ सकते हैं। लेकिन आप जानते हैं बस निर्देशों को पढ़ना और इसे कैसे लेना है, इससे बीमारी ठीक नहीं होती है। देखा, इसे दवा चाहिए, इसलिए इसे लेना होगा। तो एक मनुष्य कह सकता है, मैं एक धर्मज्ञानी हूँ, अब मुझसे इसके और उसके बारे में बात मत करो। मैं वचनों को जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि बाइबल ऐसे ऐसे बताती है। यह वो जो मेरे वचन को सुनता है, उदाहरण के लिए संत यूहन्ना 5:24, वो जो मेरे वचन को सुनता है और उस पर विश्वास करता है जिसने मुझे भेजा है, उसके पास अनंत जीवन है। या किंग जेम्स की बाइबल में इसे अनंतकालिक कहता है, जो सही रूप में अनंत है, उसके पास अनंत जीवन है क्योंकि वो विश्वास करता है। बहुत से लोग कहते हैं कि वे विश्वास करते हैं। अब यह सच है, वो वचन सही है। मैं दवाई के निर्देश को पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ कि वो दवाई के निर्देश क्या है और मेरे पाप के लिए पाप नाशक है, लेकिन क्या मैं इसे ले सकता हूँ? क्या मैं विश्वास कर सकता हूँ? मैं हो सकता है कहूँ मैं विश्वास करता हूँ। यही वो अगली बात है, केवल इसे पढ़ना और निर्देशों को जानना यह बीमारी का इलाज नहीं करता है। परेशानी यह है कि हमारे मामले में हमें जो उपचार करने के लिए कहता है हम नहीं करते हैं। हमारे पास उपचार है लेकिन हम इसे नहीं लेते हैं। हम कहते हैं कि हम करते हैं क्योंकि हम इसे पढ़ सकते हैं, लेकिन वास्तव में इसे लेने के लिए हम ऐसा नहीं करते हैं। देखो, इस मामले में सुसमाचार उसी तरह से है, एक दवा है। यदि मरीज और मरीज का इलाज करने के लिए इस उपचार को साबित किया गया है और मरीज इस दवा की खोज के बारे में सब कुछ पढ़ता है और वे उस दवा के अंदर की हर एक माप को जानते हैं, वे उन सारे वैज्ञानिक के नाम को जानते हैं जिसने इस निश्चित दवा को ढूंढा है, जैसे सॉल्क टीका और इत्यादि, और हम इसके बारे में सारे वचन को जानते हैं, लेकिन इसे लेने से मना करते हैं, तो यह हमारी सहायता नहीं करेगा। देखो, यह हमारी सहायता नहीं करेगा। लेकिन और फिर हम कैसे कहते हैं, लेकिन हमने इसे लिया, और यदि आप कहते हैं कि आपने इसे लिया है और मरीज कोई परिणाम को नहीं दिखाता है, तो उसने इसे नहीं लिया है। ऐसा ही है। कैसे यदि दीवार पर वो लगी हुई घड़ी इस तरह से बांधाने डालती थी, तो देखो, मैं इस पर बने रहना चाहता हूँ और हमारे लोगों के लिए मजबूत करूँगा, क्योंकि सुसमाचार इन लोगों को साबित कर चुका है और वे दावा करते हैं कि वे इसे लेते हैं और ये दिखाता है कि वे इसे नहीं लेते हैं। कैसे एक मनुष्य उस छोटी सी चीज पर वचनों को पढ़ सकता है जिसके बारे में मैं बोलता हूँ? महिलाएं जो अपने कटे बालों के साथ होती है और छोटे कपड़े पहनती है और इसी तरह से इत्यादि, वे खुद को मसीह कह सकते हैं, जबकि वही दवाई अपने आप में कुछ अलग ही कहती है। समझे? कैसे आप कहते हैं, लेकिन मैं आत्मा में नाचा, मैंने अन्य भाषा में बात की, इस बात का कोई मतलब नहीं होता है। आपका खुद का जीवन साबित करता है कि आपने इसे नहीं लिया है। समझे? आपने कहा आपने इसे लिया है, लेकिन आपने इसे नहीं लिया है, क्योंकि आप अभी भी उन सारे लक्षणों को दिखा रहे हैं जिसका दवाई से इलाज होना चाहिए, और वो दवाई सुसमाचार की श्रेणी में एक गारंटीकृत इलाज है, इसे होना ही है। अब आप देखना, आपको परिणाम को दिखाना है। आप एक व्यक्ति को ले जो कहता है कि वो मैं हूँ, मैं एक विश्वासी हूँ, मैं विश्वास करता हूँ। सुसमाचार की ज्योति उन पर पढ़ने दो भाई, वे इसे ठीक अभी ले लेंगे और वे परिणाम को दिखाएंगे, निश्चय ही। आप उस व्यक्ति को किसी और खेल जुआ के कमरे में नहीं देखेंगे, आप उसे यहाँ अपने हाथ में सिगरेट लिए हुए नहीं देखेंगे, आप उसे शराब पीते नहीं देखेंगे, ओ नहीं, आप उसे किसी और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करते नहीं देखेंगे, नहीं नहीं नहीं। मैं परवाह नहीं करता कि वे उनके स्त्री की देह को उसके सामने कितना भी प्रदर्शन करें, वह अपने सिर को आसमान की ओर उठाकर और मसीह की ओर देखेगा। ये क्या है? ये दिखाता है उपचार का असर हुआ है, और यदि इसका असर नहीं होता है, आप कहते हैं तो मैं जानता हूँ मैंने इसे लिया है, ठीक है, तो फिर आज आप कहाँ पर हैं? आप मर रहे हो। आप दिखाते हैं मैं आपके मामले को बाइबल के द्वारा रोग का निरीक्षण करते हुए देख रहा हूँ कि आप अभी भी पाप में हैं, और पाप की मजदूरी मृत्यु है। ऐसा मत सोचना इससे कुछ सामान्य हो जाएगा। देखो, आपके खुद के कार्य साबित करते हैं, आपके खुद के कार्य साबित करते हैं कि आपने इसे नहीं लिया है, आपने सोचा कि आपने लिया था। आमीन। आप सब ऐसा करने में ईमानदार हो सकते हैं, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया है, क्योंकि यदि आपने लिया है तो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की कि इसका आपके ऊपर असर पड़ेगा, और वो पुराना पाप अभी भी वहाँ पर है, वो पुराना आदम का स्वभाव अभी भी वहाँ टिका हुआ है, वो पुराना अविश्वास। फिर भी आप अपने आप को बनाने की कोशिश करते हैं, अपने संगी लोगों के सामने कहते हैं, ठीक है, मैं एक विश्वासी हूँ, ओह परमेश्वर की महिमा हो, जी हाँ मैं एक विश्वासी हूँ, लेकिन आप देखें इससे आपको कोई सहायता नहीं मिलेगी। हो सकता है मरीज अपने आप में यहाँ तक दवा लेने के लिए भी पहले से ठहराया नहीं गया था। यदि ऐसा होता तो यह कभी भी असर नहीं करेगा, यह सही बात है, आप समझे। लेकिन उस छोटी अनैतिक महिला की ओर देखो, जब उजाला उस पर चमकता है तो उसकी परिस्थिति का ध्यान रखने के लिए वहाँ पर कुछ तो रखा हुआ था। देखा, यदि हम विश्वास करें और ईमानदारी से अंगीकार करें तो परमेश्वर के जरिए का यह उपचार असर करता है। परमेश्वर ने इन बातों के लिए एक जरिया ठहराया है। अब देखो, मनुष्य जाकर कहेगा तो ठीक है, मैं कलीसिया से जुड़ गया हूँ, इससे मेरे साथ मामला सुलझ जाता है। यह परमेश्वर का ठहराया हुआ जरिया नहीं है। परमेश्वर का ठहराया हुआ जरिया पश्चाताप है, अंगीकार करना है, और एक परिणाम को दिखाता है जो पश्चाताप होने पर आगे फलों को लाता है, ईमानदारी को दिखाता है। क्या आप लोग केवल आज सुबह ऐसा करेंगे तो इसके लिए प्रार्थना की जाएगी, और आप लोग जो इस टेप को सारे संसार में सुनते हैं और इस टेप को बाद में चलाया जाता है, और सेवकगण या वो व्यक्ति जो सभा के झुंड में इसे चलाते हैं, जंगलों में या जहाँ कहीं भी हो वे इसे चला रहे हैं, तो पहले आपके अंगीकार को साफ करना होगा, और उसके बाद अपने हृदय में कुछ भी रखकर नहीं आना है, केवल विश्वास के साथ आना है और प्रार्थना को किया जाना है, वहाँ पर वो दवाई काम करेगी। यीशु ने कहा, तुम में से हर एक जन पश्चाताप करे। मेरा मतलब पतरस ने पेंटिकॉस्ट के दिन कहा, पश्चाताप करो और पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, और तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। जब आप पूरी तरह से पश्चाताप करते हैं और प्रभु पर विश्वास करते हैं और यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेते हैं, यदि आपको पवित्र आत्मा नहीं मिलता है तो आप परमेश्वर को झूठा बनाते हैं। यदि यीशु ने यह कहा, उसके कलीसिया की अंतिम आ गया, यह चिन्ह उन लोगों के पीछे जाएंगे उनके लिए जो विश्वास करते हैं, यदि वे बीमारों पर अपना हाथ रखें तो वे चंगे हो जाएंगे। और आप उन विश्वासियों के पीछे उन चिन्हों को देखते हैं, और आप आते हैं और विश्वासी आप पर हाथ को रखता है और कुछ नहीं होता है, तो आपके विश्वास के साथ कुछ तो गड़बड़ है, समझे। वो विश्वासी परमेश्वर ने एक ठहराए हुए जरिए की प्रतिज्ञा की है। हम ये कहकर सहायक को पाने की कोशिश करते हैं, मुझे नहीं सुनना है, नहीं, यह सही बात है, आपको सुनने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि आप अनंत जीवन के लिए पहले से ठहराए गए हैं तो आप इसे सुनेंगे और आप इससे आनंदित होंगे। ये ही आपका सहायक है, ये वो चीज है जिसके लिए आप अपने सारे जीवन भर इच्छुक रहे हैं, यही वो मोती है जिसके लिए आप सबको छोड़ने को तैयार हैं। देखा, आप इसे चाहते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि ये आपके लिए परमेश्वर की प्रेम से भरी चिंता है। यह कुछ तो है जो पाप के सवाल का समाधान करे, ताकि अविश्वास का समाधान करे, ताकि हर एक चीज का समाधान करे आपके लिए, यदि आप चाहते हैं तो। यह वह है जो सचमुच बीमार है और जानता है कि वो बीमार है, जो एक चिकित्सक को ढूंढता है, समझे। यीशु ने कहा कि वह जो बीमार नहीं है उसे उस एक की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यह उनके लिए है जो बीमार हैं। यदि आप अपनी परिस्थिति को समझ सकते हैं तो आपको वैसा ही करना होगा जैसा उसने करने को कहा था, तब इसे होना है, या परमेश्वर ने बताया कि कुछ तो गलत था। देखा, बहुत से लोग कभी कभी चंगाई की सभा आप इसे सच्चाई से आरंभ नहीं करते हैं। आपको जीवन को साफ करने की आवश्यकता है, आपको उस स्थिति में आना होगा, आपको वास्तव में कहना होगा, हाँ मैं विश्वास करता हूँ, और यह आपके हृदय से होना चाहिए। तब आप न ही कोई भी आपके पास आकर बच्चों के जैसे आकर कहे अब ओह प्रिय भाई प्रिय बहन आपको इसे करना चाहिए, आपको वैसा करना चाहिए, आप एक विश्वासी हैं, वहाँ कोई भी आप में से इसे नहीं ले सकता है। मैं परवाह नहीं करता कि कोई और क्या कहता है, कोई भी सांत्वना, कोई भी दिलासा देने वाला, कोई भी डॉक्टर, कोई भी अस्पताल, कोई भी बीमारी का निरीक्षण करने वाला इसके बारे में कुछ भी कहे, आप फिर भी विश्वास नहीं करते हैं, आप इसे जानते हैं। अब यही वो वास्तविक चीज है। हमारे पास इन सारी चीजों में बहुत अधिक नकल करने वाले हैं, इसे इसी तरह से होना है। इसके बारे में दुख प्रकट मत करना, ऐसा वहाँ होना ही है, यह हमेशा ही होता रहा है और ऐसा होता रहेगा। लेकिन मैं आपको आज सुबह बता रहा हूँ कि सत्य और वास्तविकता क्या है। हम अंत समय में हैं, हमें इस चीज को सत्य पर रखना होगा, देखो और इसे जानना है कि सत्य क्या है। अब हम देखते हैं कि लोग इसके बारे में परमेश्वर के जरिए को नहीं लेते हैं, वे चाहते हैं, वे परमेश्वर ने आपके सहाय के लिए एक जरिए को ठहराया है, परमेश्वर के पास इन सभी चीजों के लिए ठहराया हुआ एक जरिया है, लेकिन लोग इसे नहीं चाहते हैं, लोग अन्य जरियों के पीछे जाते हैं और हर बार जब वे इस परमेश्वर के जरिए को छोड़ कोई और जरिए से करते हैं तो वे हर बार इसे करने पर परमेश्वर के क्रोध को उन पर लाते हैं। तो ठीक है, और ये सारी चीजें जिसे मैंने बताया है यह हमें सांसारिक बातों की ओर लाती हैं। ये सारी चीजें, ये सारी अन्य वैज्ञानिक उपलब्धियों के पीछे जा रही हैं, कलीसिया की उपलब्धियों के पीछे जा रही हैं, विभिन्न चीजों के पीछे जा रही हैं, जो हमें संसार के अंत की ओर ला चुकी हैं।
We're at the end. There's not one hope left.
हम अंत पर हैं, एक भी आशा नहीं बची है, हम एक जीने की आशा के बिना हैं, हमें यहाँ तक एक जीने का एक भी मौका नहीं है। अब मैं बस कुछ मिनटों के लिए इसे खुलासा करके बताऊंगा और बस इसे साबित करूंगा, और आप में से हर एक जन इसे जानते हैं। यदि आप नहीं जानते हैं तो आपको चिकित्सक संबंधी अखबार लेना चाहिए, आपको रीडर डाइजेस्ट पत्रिका लेना चाहिए और इत्यादि, जहाँ आप इन उपलब्धियों को पढ़ते हैं। अब ऐसा करने के लिए यहाँ एक मंत्री ने संसार भर में इस संदेश को भेज रहा था, इस प्रकार के बयान देने के लिए कि हम बिना आशा के हैं, कि हम छुटकारे से परे हैं, कि हम छुटकारे और न्याय के बीच की रेखा से पार हो चुके हैं। अब मुझे सभा के लोगों को कुछ आधार को देना ही होगा ताकि इस बयान पर बुनियाद रखूं। वहाँ ऐसा कुछ तो कारण होना अवश्य है कि एक मनुष्य, यदि वो अपने सही मनोस्थिति में है जैसा मैं सोचता हूँ कि मैं हूँ, तो वो इस तरह का बयान देगा कि वह अपने राष्ट्र को बताए, कि वे अपने सभा को बताए, जो लोगों को बताए, जहाँ वो जाएगा संसार भर के 30 या 40 विभिन्न राष्ट्रों में, हो सकता है पूरे संसार भर में और लोगों में और भाषाओं में, कि हम अंत समय पर हैं। ये बयान देना ये हमारे लिए लाभ की बात है, या इसे थोड़ा सा समझाना जब तक हम अपने सुबह के मुख्य पाठ तक नहीं पहुंच जाते। देखो अब आइए देखते हैं विज्ञान और शिक्षा ने हमारे लिए क्या लाया है, और यही वो चीज है जिसे मनुष्य ने परमेश्वर के वचन के स्थान पर स्वीकार किया है, उस एक वैज्ञानिक समर्थन को। और विज्ञान हमेशा ही जो कुछ कहता है उसे वापस लेना पड़ता है। मैं यहाँ कुछ समय पहले पढ़ रहा था जहाँ एक फ्रांस के वैज्ञानिक ने लगभग 200 या 300 वर्ष पहले कहा था पृथ्वी के चारों ओर एक गेंद का घूमना, और कहा यदि यह गेंद इस गति पर, क्या संसार ने कभी किसी एक तरह का आविष्कार किया है जो कुछ ऐसा है कि उन्हें सारे संसार भर की यात्रा को कम से कम 30 मील प्रति घंटे की रफ्तार से तय करवाता हो। ऐसा ही कुछ वह वैज्ञानिक रूप से साबित करेगा कि यह उसके वजन पर पृथ्वी से चुंबकीय शक्ति के द्वारा उठाया जाएगा। देखा, अब आप सोचें कि क्या विज्ञान कभी उस व्यक्ति का फिर से हवाला देगा? निश्चय ही नहीं, यह बात उनके लिए बीत चुकी है। अब आइए केवल सोचें, हम सभी कहना चाहते हैं, मैं इसे वैज्ञानिक रूप से साबित करना चाहता हूँ। यही है जो आज बहुत से संप्रदाय के धार्मिक लोगों का कहना है, वे एक वैज्ञानिक प्रमाण को चाहते हैं। तो मैं तभी वापस मुड़कर और कह सकता हूँ, परमेश्वर वैज्ञानिक रूप से मुझे साबित करे, आपके सभा के लोगों में मुझे कुछ भी वैज्ञानिक रूप से साबित करे, ये वास्तविक है। साबित करे वास्तविक क्या है, वो जीवन। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे इसके लिए एक चौथाई कीमत चुकाएं, या जो कुछ मेरे पास है मैं उसे बेच देता हूँ उस जीवन के भाग को पाने के लिए, और वो जीवन वास्तविक है? यदि ये नहीं है तो हम सब यहाँ पर क्यों है? जीवन, विश्वास, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, सज्जनता, नम्रता, संयम, विज्ञान इसे छू नहीं सकता है, और यही केवल वास्तविक चिरस्थायी चीज है जो वहाँ पर है। संपूर्ण मसीही हथियारबंदी उस अदृश्य के लिए देख रहे हैं, लेकिन वे चेतनाएं उन चीजों को घोषित नहीं करती हैं, लेकिन वे वहाँ पर हैं। यही कारण है कि इसे भरोसा करने के लिए ये विश्वास को लेता है और ये आपके अंदर उत्पन्न होता है, जिसे विश्वास वहाँ पर घोषित कर चुका है। ये इसे आपके लिए लेकर आता है दैविक चंगाई और इत्यादि। वे साबित नहीं कर सकते जो दैविक रूप से चंगा करता है, लेकिन वे जानते हैं कि एक दैविक चंगाई है। वे साबित नहीं कर सकते जो पाप से बचाता है, लेकिन वे जानते हैं लोग पाप से बचाए जाते हैं। सो इसे वैज्ञानिक रूप से साबित नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसे वैज्ञानिक रूप से परमेश्वर के देखने का तरीका है। अब विज्ञान ने हमें किस बात पर लाया है? अब आप कुछ समय के लिए चौंक सकते हैं। विज्ञान ने हमारे लिए रोगों, मृत्यु और बीमारियों को लाया है। अब आपको केवल तस्वीर का एक पहलू ही दिखाया गया है, लेकिन इसके दो पहलू हैं। आप कहते हैं विज्ञान ने इसका आविष्कार किया है, उसका और इत्यादि, तो ठीक है, हम आपको ये सौभाग्य प्रदान करने जा रहे हैं, लेकिन आइए दूसरे पहलू की ओर देखते हैं। अब विज्ञान ने हमारे लिए रोगों को लाया है, विज्ञान ने हमारे लिए बीमारियों, मृत्यु को लाया है। देखो, विज्ञान की मिलावट ने पीढ़ी के लिए खाद्य पदार्थों और चीजों से मृत्यु को लाया है।
इट्स गॉट द पीपल सो सॉफ्ट।
इसने लोगों को इतना नाजुक बना दिया है और इस तरह से इतना तक कि पुरुष और महिलाएं मिट्टी के ढेर से बाहर आए हैं और वहाँ इसमें कोई रूपरेखा नहीं है। यह एक नाजुक बिना हड्डी की मछली का ढेर बन गए हैं। वे बिना वातानुकूल यंत्र यानी एयर कंडीशन के नहीं रह सकते हैं। वे नष्ट हो जाते हैं। वे बेसबॉल के खेल को नहीं खेल सकते हैं। यदि कोई कहीं तो फंस जाता है, ये उसे मार देता है बॉक्सिंग के मैदान में या जो कुछ भी और है, और ये इतना नाजुक बन गए हैं, इतना तक कि पुरुष और महिलाएं वे उन्हें दूषित कर रहा है, और वे इस मिलावट संकरण को जानवरों को डाल रहे हैं, इससे अब वे मानव जाति में वापस आ चुके हैं स्वयं विज्ञान के अनुसार, और उनमें से उलट फेर बना रहे हैं। क्योंकि जब एक गाय संकरित होती है या कोई भी भोजन संकरित होता है, तो वह भोजन रक्त कोशिका को बनाता है, और रक्त कोशिका आपका जीवन है। देखें कि इसने क्या किया है। और फिर मांस में, वे यहाँ मांस में इंजेक्शन को डालते हैं, और अब यह साबित हो गया है कि ये इंजेक्शन मानव जाति पर प्रभाव डालते हैं। वैज्ञानिक, वे खेतों में इस डीडीटी से छिड़काव करते हैं। मैंने एक दिन देखा, और अब हमारे इस समुदाय में अंडे खाने से 800 लोग बीमार हो गए हैं। क्या आपको वर्षों पहले याद है जब मैं पहली बार, जब हमारे पास यहाँ छोटी संरचना थी और मैं भविष्यवाणी कर रहा था और कहा ये अंतिम दिनों में होगा, घाटी में मत रहना और अंडों को मत खाना। मैंने इसे मेरी किताब पर डाला है। मैंने सोचा कि इसके बारे में कुछ तो है, और मैंने जाकर और इसे देखा, अंडों को मत खाना। यह बहुत पहले 1933 में बताया था। अंडों के अंदर अब उनमें कुछ तो है, और मैं देखता हूँ कि विज्ञान कहता है कि 50 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति को कभी भी अंडे नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये हृदय के लिए बहुत ही ठोस चीज है जिसे खाया जा सकता है। बीमारियाँ, दूध, ये अक्सर हमारा सबसे संतुलित आहार होता था। डॉक्टर आपसे कहेगा इससे दूर रहो, यह साइसाइटिस और इत्यादि अन्य हो रहा है। ये वही मनुष्य है जो इसे हमेशा पीकर और वर्षों तक जीता था और कभी साइसाइटिस को नहीं जानता था, लेकिन संकरण और इत्यादि ने मनुष्य जाति की संरचना को इतना तोड़ मरोड़ दिया है, इतना तक कि ये कुछ भी नहीं, एक मिट्टी का ढेर है। बीमारी की एक गेंद, इसे किसने किया? विज्ञान। देखो, यह पुरुष और महिला के बीच वंशाणु के कमजोरी का कारण है। मनुष्य जाति की शारीरिक कमजोरी वंशाणु के जरिए से और मंदबुद्धि बच्चों की वृद्धि लगभग 30% ज्यादा हो गई है। मंगोलियाई सबसे ऊपर है, और ये कमजोरी खाद्य पदार्थ संकरण जो हम जीने के लिए खा रहे हैं, जो शरीर को कमजोर बना रहा है, जिसके कारण कैंसर, मानसिक परेशानी और सब प्रकार की बीमारियां मनुष्य शरीर पर आती जा रही हैं, इसलिए इसकी कमजोरी है। वैज्ञानिक खुद को नष्ट कर रहा है, परमेश्वर की योजना से दूर जा रहे हैं। उसने कहा, हर एक बीज अपनी जाति के अनुसार लाने दो। देखो हम कहां पर हैं। मैं इस पर आगे और आगे जा सकता हूं। हमारा समय निकलता जा रहा है, लेकिन ध्यान दें, यह क्या है जो इसे कर रहा है। विज्ञान ने मृत्यु, बीमारी और विनाश को लाया है। और मैंने एक दिन देखा, मैं अपने अच्छे दोस्त से बात कर रहा था, डॉक्टर वेल यहाँ पर बैठे हुए हैं, जहाँ पर एक लेख है कि लोग पेनिसिलिन दवा के द्वारा मारे जा रहे हैं। यह असल में पेनिसिलिन दवा नहीं है, यह तो गंदगी है जिसे वे पेनिसिलिन को तैयार करते समय इसमें मिलाने देते हैं। यह एक पैसा बनाने के लिए लालच की योजना है। डॉक्टर इसे कभी तो देते हैं जो एस्पिरिन गोली की विधि को जानते भी नहीं है, और उनके पिता उन्हें किसी और एक विशेषज्ञ के पास भेजते हैं जो ये जानते भी नहीं कि कैसे एक बच्चे के पेट के दर्द का इलाज किया जाए। लेकिन हमें क्या मिला है? लालच, कुछ तो खींचने के लिए या थोड़ा सा कुछ। उनके देश में पुराने शैली के डॉक्टर शायद ही अब नहीं होंगे जो वहाँ जाया करते थे और आपसे बात करते और आपको सांत्वना देते और सब कुछ करते थे। वे परमेश्वर को तस्वीर से बाहर रखते हैं क्योंकि वे उनके खुद के तरीके से चले जाते हैं। वे परमेश्वर को तस्वीर से बाहर करने के लिए उन्होंने उसकी व्याख्या करके उसे बाहर निकाल दिया है। हम वहाँ पर हैं। यही है जिसे हमने संकरण करने के द्वारा किया है। आप देखते हैं एक स्वस्थ पौधे कैसे बनते हैं। एक कीटाणु शायद ही इसके अंदर जा सकता है। ये जो क्यारी के पौधे हैं, इन संकरित पौधों को हमेशा ही आपको छिड़काव करना पड़ता है। और आप में से बहुत से लोगों ने मेरा संदेश संकरित धर्म यानी कि हाइब्रिड रिलीजन पढ़ा है, उसे छिड़काव करते रहें और बच्चों के जैसे और इत्यादि। ध्यान दें, लेकिन उस सच्चे वास्तविक पौधे को छिड़काव करने की आवश्यकता नहीं होती है, वो मूल होता है। वो क्या है जो मनुष्य देह में बीमारी को लाती है? जैसा कि मैंने अपने एक बहुमूल्य डॉक्टर मित्र को बताया, जिसका मैं ठीक अभी नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो एक बहुत अच्छा भाई है। हाल ही में मैं एक दवाई की पत्रिका में से मेरे लिए कुछ तो पढ़ रहा था, एक किताब जो उसके कार्यालय में, जहां वो इन सारी अच्छी किताबों और दवाई की नवीनतम सामग्री को रखता है। यह कमजोरी है, आप ध्यान दें, जो कुछ भी वास्तविक है। आप कहते हैं कि आपका शरीर काम करना बंद कर रहा है, आप तुरंत ही कुछ ठंडा पी लेते हैं। यह क्या है? यह आपके शरीर की कमजोरी है जो आपके ग्रंथियों से एक कफारी मल तैयार करता है और उसमें सर्दी के कीटाणु अपने आप ही आने लगते हैं और आपको सर्दी हो जाती है। लेकिन यदि वो शरीर मजबूत होता था तो वो उस सर्दी के कीटाणु को दूर फेंक देगा, यह इसे छू नहीं सकता था। सो आप देखते हैं, जब परमेश्वर ने पहली बार एक मनुष्य का निर्माण किया तो वह किसी भी बीमारी से मुक्त था। देखा, लेकिन अविश्वास और विज्ञान, विज्ञान और शिक्षा जो पहली चीज थी जिसने एक मनुष्य को परमेश्वर से दूर कर दिया, और यह अभी भी उसे दूर ले जा रहा है। केवल देखें, सिगरेट और शराब पीना और ये निवस्त्र होना और इत्यादि ने इस पीढ़ी को बिगाड़ने के लिए क्या किया है। मैं सोचता हूं कि आप हमेशा आश्चर्य करते होंगे, मैं यहां एक बयान को देने जा रहा हूं। मैं ऐसा करने वाला नहीं था, लेकिन मैं सोचता हूं कि मैं करूंगा। देखो, वे कभी कभी सोचते हैं, वे हमेशा ही मुझसे कहते हैं, भाई ब्रैनम, आप हमेशा इस तरह की चीजों को क्यों उठाते हैं? आप इसे नहीं सुनते, कहते हैं कि आप एक मनुष्य की कलीसिया में जाते हैं क्योंकि मैं अपने महिलाओं के झुंड को ले सकता हूं, और यहां तक वे आराम से बैठ भी नहीं सकती जब आप बोल रहे होते हैं। आप हमेशा उन पर चिल्लाते रहते हैं तो उनके छोटे बालों के बारे में और पुरुषों से संबंधित कपड़ों को पहनने के बारे में और इस प्रकार की सारी चीजों पर कहते हैं, आप ऐसा क्यों करते हो? अब मैं, यह अगले गर्मियों तक मेरा आखिरी संदेश हो सकता है, आप जानते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर है ये, यह अंतिम दिनों के लिए परखने का आत्मा है जो जानता है ये परमेश्वर के सामने यह एक श्रापित चीज है। मैं बस कभी तो सोचता हूँ कि क्या कोई सेवक के पास क्या अंतिम दिनों की कोई परख है? वही परमेश्वर जो मंच पर बताता है कि आपकी परिस्थितियाँ और आपने क्या किया है और आप क्या होने जा रहे हैं और आपकी क्या परेशानी है, वही आत्मा आपके अंदर देखती है और समय के चिन्ह को परख सकती है और इससे आप चिल्ला उठने से रुक नहीं सकते हैं। ये परखने का आत्मा है क्योंकि पवित्र आत्मा स्वयं कहता है यह चीज पाप है और जो कोई भी इसका भागीदार बनता है वह नाश हो जाएगा। और तब भला मैं परमेश्वर की दृष्टि में कैसे उचित हो सकता हूँ? और जब अपने भाइयों और बहनों को इस तरह की परिस्थिति में देख रहा हूँ, यदि मैं इसके विरोध में नहीं बताता हूँ, यहाँ तक भले ही वे मुझसे नाराज भी हो जाएं, फिर भी मुझे इसके विरोध में बताना ही होगा। यह परखना है। कभी कभी उनका वचन में मतभेद होता है और इत्यादि, और यह परख की कमी है आकर वचन के द्वारा इसका सामना करना। देखा, देखो हम जानते हैं कि यह सही है तो ठीक है, ये जानते हैं कि यह सत्य है, यह अंतिम दिनों की परख है। अब हम विज्ञान के बारे में देखते हैं, मैं अब इस पर आगे नहीं जाना चाहता हूँ, मेरा समय बस बहुत तेजी से निकलता जा रहा है। अब आइए कुछ क्षण शिक्षा पर लेते हैं और देखते हैं किसने क्या किया है। देखा, अब हमारे पास दो बड़ी संख्या में कलीसिया हैं। अब हम समझते हैं कि ऐसा था कि यह वो कारण था कि आम तर्क वितर्क ने पहली बार पाप की गेंद को लुढ़काना आरंभ किया था। ये तर्क वितर्क क्या था? परमेश्वर के वचन के विरोध में तर्क वितर्क। जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बताया, जिस दिन तुम उसे खाओगे उस दिन तुम मर जाओगे, बात खत्म हो जाती है। ये ऐसा ही है, और उसने उन्हें शत्रु के विरोध में उसके वचन के पीछे किलाबंदी की। लेकिन जब हवा शैतान के तर्क वितर्क को सुनती है, देखो संस्कृति, समझ, शिक्षा, प्रगति, देखो उसने उसके पीछे से निकलकर वहाँ पर कदम रखा और शैतान के तर्क वितर्क को सुना और उन चीजों को किया जिसे परमेश्वर ने कहा मत करना। और यदि एक तर्क वितर्क है, उस एक तर्क वितर्क को सुनना जो वचन के विरोध में है, जो इस सारी गड़बड़ी का कारण है, एक तर्क वितर्क जो वचन के विरोध में है, फिर से आपको उसी स्थान पर नहीं ले जाता है। यह परमेश्वर के लिए कितनी मूर्खतापूर्वक बात होगी कि मनुष्य को उसी आधार पर वापस लाए जहाँ से उसने उसे बाहर कर दिया था। देखा, समझे, आपको मसीह के बाए हुए लोगों के पास आना होगा। आपके संप्रदाय काम नहीं करेंगे, आपके तर्क वितर्क काम नहीं करेंगे। ये तो लहू और जन्म है, ये आपके अंदर एक नई सृष्टि को उत्पन्न करता है जो मसीह है। और आप मसीह के आचरण के अनुरूप जीते हैं, क्योंकि जो विष आप लेते हैं ये दिखाता है ये विश्वास के पाप को खत्म कर देता है, परमेश्वर के वचन को छोड़ किसी के भी विरोध में। शिक्षा हमें देती है, वहाँ हमारे पास, हमारे सामने आज सुबह दो कलीसिया है, उनमें से एक पेंटिकॉस की कलीसिया है जिसे पवित्र आत्मा के द्वारा पेंटिकॉस पर स्थापित किया गया था, और दूसरी है रोमन कैथोलिक की कलीसिया जिसे रोम के निशिया में स्थापित किया गया था। उनमें से एक आत्मिक जन्म है, दूसरा एक बौद्धिक सदस्यता है। उस कलीसिया से सारे प्रोटेस्टेंट आए हैं, सारे संप्रदाय आते हैं, वो पहला संप्रदाय था। सारे संप्रदाय उसी एक में से आते हैं और उसी से संबंधित हैं। प्रकाशित वाक्य 17 ऐसा कहता है, वो एक वेश्या थी और वो वेश्याओं की माता थी। यह सही बात है। सुबह कोई नहीं मटका पतीले को चिकना नहीं कह सकता है, क्योंकि यह सही है, यह बस एक ही है, यह संस्थापक है, यह खत्म हो गया है, यह रोम में है, मुझे परवाह नहीं है यह क्या है, यह खत्म हो गया है। बाइबल, हम बस अभी अभी उन कलीसिया युगों में से होकर आए हैं इसे साबित करने के लिए। एक आत्मिक समझ पर आधारित है, दूसरा शिक्षा और बौद्धिक विचारधारा पर आधारित है। अब यह हमें फिर से उसी अदन के बगीचे में वापस रखता है, ठीक वापस उसी स्थान पर। ये वो स्त्री कलीसिया ही थी जिसने नहीं सुना, न ही आदम, वो स्त्री थी। अब वे आगे जाकर माता कलीसिया बनना चाहते हैं, ये बिल्कुल सही बात है, कुछ भी समय से बाहर नहीं है। देखो वे अपना खुद का अंगीकार बनाते हैं, देखो ठीक उसी चीज की ओर वापस, परमेश्वर के वचन का अविश्वास करते हुए। रोम के निशिया में जब पानी के बपतिस्मा के बारे में सवाल ऊपर आया, इसी तरह की अन्य चीजों के बारे में और पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के बारे में वे विषय पूरी तरह से संगठित हो गए, जिसे रोमन कैथोलिक कलीसिया कहा जाता था, जो एक शाही रोमन कहा जाता था। मैं बस कल इतिहास को लेते हुए इसमें से होकर जा रहा था और इसे सुन रहा था और फिर से देख रहा था, और यह केवल रोमन के लिए ही होना था। रोम में शाही कलीसिया थी, अन्य केवल छोटी साथी कलीसिया थी जिन्हें बस कैथोलिक कहा जाता था। हमारी कलीसिया भी कैथोलिक विश्वव्यापी कलीसिया है जो सारे विश्वासियों का विश्वव्यापी विश्वास है। उनमें से एक परमेश्वर के आत्मा से जन्मे हुए हैं और इनमें पवित्र आत्मा है और इसे अपने जीवन सिद्धांत और क्रिया के द्वारा साबित करती है कि पवित्र आत्मा वहाँ उसमें है, क्योंकि ये वो सहायक है जिसकी मसीह ने प्रतिज्ञा की थी उसकी कलीसिया में कार्य करते हुए उसी कार्य को करते हैं जो उसने आरंभ में किया था। जो इसी तरह से मसीह के उद्धार का विषय जिसने आरंभ में काम किया, इसी तरह से यह आज काम करता है, उसी बात को आगे लाता है। वो दूसरा एक संप्रदाय की मानसिक विचारधारा है जिसे मनुष्य के एक झुंड के द्वारा बनाया गया है, जिसमें भक्ति का भेष तो धरते हैं जैसा कि भविष्यवक्ता ने हमें बताया, और इस सत्य की सामर्थ का इनकार करते हैं। अब यह उतना ही साफ है जितना मैं जानता हूँ कि यह किस तरह से बनता है। अब दो कलीसिया हैं, उनमें से एक का जन्म नीसिया में हुआ था और दूसरे एक का जन्म पेंटिकॉस्ट पर हुआ था, और वे हमेशा एक दूसरे के विरुद्ध रहे हैं। हम इसे साबित करने के लिए कलीसिया के युगों में से होते हुए आए हैं, एक दूसरे के विरुद्ध रहे हैं। उनमें से एक अच्छी उच्च दर्जे की अच्छे विद्वानों के साथ एक बौद्धिक कलीसिया और इत्यादि है, दूसरी ऐसे दर्जे के हैं जैसे पवित्र चिल्लाने वालों का झुंड। ये आरंभ में नशा करने वाले अनपढ़ मछुआरे थे और आज भी यही बात है, यह अभी भी उसी दर्जे की छेड़ी में है। उनमें से एक वैज्ञानिक है, दूसरा आत्मिक है। एक वैज्ञानिक व्यवस्था है, दूसरा वचन की आत्मिक समझ है। एक वैज्ञानिक रूप से व्यवस्थित है जिसे उन बौद्धिक बिशप मनुष्य का झुंड कहते हैं, दूसरा एक पूरी तरह से परमेश्वर की आत्मा से जन्मा हुआ है और परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जीता है, और यह क्रियावंत होता है और ये वचनों को पूरा करने को लगाता है जिसकी परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी। दिखाता है कि आप कौन सा विष ले रहे हैं, क्या आपने शिक्षा के विष को लिया है, क्या आपने पवित्र आत्मा का विष लिया है। देखा तो ठीक है। ओह, यह शैतान का कपटीपन है। वह किस तरह से तस्वीर को बना सकता है, बौद्धिक रूप से एक ऐसे व्यक्ति को तैयार कर सकता है जो परमेश्वर की आत्मा से नहीं जन्मा होता है, बस घुमाता रहता है और घुमाता रहता है, और बौद्धिक रूप से कोई जरिया नहीं है कि उनके साथ आगे जाएं, कोई जरिया नहीं है। यह एक विश्वास के द्वारा परख है। देखो, एक परख, वचन क्या कहता है, हम इसे देखते हैं, हम इसे विश्वास करते हैं। तब भाई ब्रैनम, वे कहते हैं कि उनके पास परख है, फिर पवित्र आत्मा को वही उत्पन्न करने दो जो उसने उत्पन्न करने की प्रतिज्ञा की थी, उसके बाद हम इसे विश्वास करेंगे। देखा, यह इसका प्रमाण है। विश्व ने किस तरह कार्य किया जब ये उस व्यक्ति को प्रभावित करता है। यह चिन्ह उन लोगों के पीछे जाएंगे जो विश्वास करते हैं। उसने कहा, यदि विश्व प्रभावित करता है तो यह ठीक बात है। देखा, सो उन्होंने हमारे लिए इसे लेकर आता है। यह हम अगले कुछ मिनटों में बंद करते हुए, सो यह हमारे लिए हाबिल और केन से लाता है, नूह के समय के न्याय के लिए, उसी आगे आने वाले नूह के समय के दिनों से। अब आगे हमारे पास प्रार्थना की पंक्ति है। अब ध्यान से सुनना, जब मैं यहाँ एक छोटे से विषय के लिए कुछ वचनों को यहाँ वहाँ से ले रहा हूँ। हम देखते हैं कि संसार वचन के प्रति उसके बौद्धिक विचारधारा को लेने के बाद यह मनुष्य महान मनुष्य बन गया, प्रसिद्ध मनुष्य। बाइबल उत्पत्ति 6:4 में ऐसा कहती है, वो प्रसिद्ध मनुष्य बहुत सुंदर महिलाओं और चीजों के पीछे भागने लगता है, जैसे कि हमारा सारा संसार था, बस वे उनमें से होकर चलते गए। लाल चमकता हुआ प्रकाश पर हमने एक रात को बताया था कि किस तरह से अंतिम दिनों में महिलाओं को सुंदर होना था, कैसे मनुष्य, प्रसिद्ध मनुष्य जैसे इंग्लैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका के घोटालों में थे, और इसकी अब भी इन दिनों में से एक की खोज की जाएगी। देखो, आप नहीं जानते कि ये सारी वेश्या और बाकी सब कुछ क्या है। देखा, क्या आप जानते हैं कि हाई स्कूल या कॉलेज की लड़कियों की तुलना में तीन में से एक मधुबालाएं हैं? हाई स्कूल या कॉलेज की लड़कियों की तुलना में तीन में से एक मधुबालाएं हैं? क्या आप एक निश्चित प्रतिशत को जानते हैं? मैं इसे अभी नहीं बता सकता क्योंकि ये मेरे सामने नहीं है, मैंने इसे कभी लिखकर नहीं रखा, लेकिन सारे देश भर में लगभग हाई स्कूल के बच्चों में से तीसरा बच्चा या तो अनैतिक साबित हुआ है या माँ बनने के लिए घर जाना पड़ा है। क्या आप जानते हैं कि पेनिसिलिन को लेना आपको वापस कामुकता के लिए विवश करता है, जो लोगों के बीच में वह विचार को तैयार कर चुका है, जो वह चीज मरी नहीं है, लेकिन फिर भी देखो, परमेश्वर ने कहा था कि ये चौथी पीढ़ी को आक्रमण करेगा। इस कारण से मंगोलियाई और इत्यादि सब है और वे बच्चे, ओह कितना पाप है, यह कितना धूर्त है। कैसे वे लोग सेवक खड़े होकर और उनके विरोध में प्रचार नहीं करते जो सड़क पर निवस्त्र होती हैं और उन्हें कलीसिया के गायक झुंड में गाना गाने देते हैं और इसी तरह से सब कुछ करते हैं। और देखो कि यही वो चीज है जिसने हमारे राष्ट्र को नरक में भेज दिया है, हमारी पीढ़ी को नरक में भेज दिया है। यह सही है। तो अब हम देखते हैं कि परमेश्वर के सामने इसके लिए इतना ही काफी है, जैसा कि मेरा विश्वास है कि उसके पास आज। अब मैं अपने विषय में आ रहा हूं। मेरे पास लाने का एक विचित्र तरीका है। मैं बहुत सारी बातों को आधार देकर और उसके बाद मेरे विषय पर आना पसंद करता हूं। अब हम नूह के दिनों में देखते हैं जब परमेश्वर संसार का न्याय करने जा रहा था, जब ये आया बिल्कुल जैसे कि अब है, क्योंकि यीशु ने इसे कहा था। क्या उसने चिंता की थी? क्या उसने चिंता की? उसने निश्चय ही चिंता की। उसने किसके लिए चिंता की? अब जब वो पहले से जानता था कि न्याय आने वाला है उसके बाद, और न्याय को स्पष्ट रूप से बताया था, उसने उन लोगों के लिए चिंता की जिन्होंने चिंता की थी, और बिल्कुल आज भी वैसा ही है। उसने उन लोगों की चिंता की जो चिंता करने के इच्छुक थे, और हम देखते हैं कि उसने उनके लिए एक भविष्यवक्ता को भेजा ताकि उन्हें निर्देशित करे, ताकि उसके चुने हुए लोगों को बच निकलने के लिए उसके ठहराए हुए जरिए की और निर्देशित करे। वो कल, आज और युगानुयुग एक सा है। देखा, हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसके लोगों की चिंता की। हम अंत में हैं और हम देखते हैं कि हम अंत में हैं। वहाँ उस भ्रष्टता के ऊपर निर्माण करने का कोई भी जरिया नहीं है। हम सदोम और गमोरा के खाक हुए खंडरों के ऊपर एक शहर भला कैसे बना सकते हैं? हम भला इसे कैसे कर सकते हैं? केवल एक ही अचंबा बाकी है, और वो है प्रभु यीशु आ रहा है। ओह प्रभु, माँ संकट की समय की अवधि में से होते हुए एक शुद्धिकरण, ताकि संसार को फिर से वापस लौटाए कुछ ऐसे लोगों के लिए जो परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी हैं और उनके वचन के द्वारा जीते हैं। ध्यान दें, उसने उन लोगों की चिंता की जो नूह के दिनों में बच निकलने की चिंता करते थे, और उसने उनके लिए एक भविष्यवक्ता को भेजा, और इस भविष्यवक्ता ने उन्हें परमेश्वर के ठहराए हुए जरिए की ओर निर्देशित किया। अब यह चीजों को करने का परमेश्वर का यही जरिया है। देखा, परमेश्वर ने नूह से बात की जो वचन था, तब यह लिखित वचन नहीं था, और नूह को लोगों के बचने के लिए एक जहाज को तैयार करने के लिए कहा, और सारे लोगों को चेतावनी दी जो उनके पास थी कि उद्धार के लिए एक जरिया है। और यह मनुष्य एक प्रमाणित भविष्यवक्ता था जिसने उन्हें बच निकलने के जरिए को साबित किया। ध्यान देना, नम्र और ईमानदार लोगों ने इस मनुष्य को सुना और उसका विश्वास किया, और वे बच निकले। वे किस से बच निकले? पाप के संसार की मृत्यु से, जिसे उस दिन पर नष्ट किया गया था। वे मौत के मार्ग से बच निकले जो सारे संसार के ऊपर रखा हुआ था। परमेश्वर ने बहुत ही अधिक चिंता की। हे परमेश्वर, प्रार्थना की पंक्ति से पहले अब इसे हृदय की गहराई में जाने के लिए सहायता करें। परमेश्वर ने चिंता की। वह अब आज संसार को देखता है, और वो बुलाता है, और वो बुलाता है, और उन्होंने ठुकरा दिया और उससे मुड़ गए हैं। आरंभ में पश्चाताप करने का मौका था, जब परमेश्वर ने यशाया से कहा कि आगे जाए और इसे रखे, हिस्किया को बताओ कि वह मरने जा रहा है। हिस्किया ने पश्चाताप किया और वहाँ दया हुई थी। जब परमेश्वर ने योना को निनवे जाने को कहा और चिल्लाकर बोलने को कहा क्योंकि 40 दिनों में वह शहर को नष्ट कर देगा, वे दया के लिए रोए और पश्चाताप किया। लेकिन जब उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया तो न्याय के अलावा कुछ भी नहीं बचा, और राष्ट्र मसीहा को ठुकरा चुका है। वे उस पुकार को ध्यान देने से चूक गए हैं, इसलिए कुछ भी नहीं बचता है सिवाय हमारे न्याय का सामना करने के। अब क्या परमेश्वर उन लोगों की चिंता करता है जिन्होंने पश्चाताप किया है? क्या उसने उनके लिए जरिए को तैयार किया है? अब हम देखेंगे उसने बीते समय में क्या किया था। नूह का समय उसने चिंता की, उसने भविष्यवक्ता को भेजा, और उसने जरिए को लाया, और उसने उन्हें मार्ग दिखाया, और उसने उनके निकलने का मार्ग बनाया, और वे न्याय से बच निकले। उसने उनकी भी चिंता की। हम देखते हैं कि वह उन्हें एक ऐसे स्थान पर लेकर आता है जहां वो अंतिम दिनों में, जहां सबके लिए वो बड़े न्याय के आने से पहले उसने इतनी अधिक चिंता की इतना तक कि उसने एक मार्ग को तैयार किया जिससे वे अंदर आ सके और सारे न्याय से मुक्त हो जाएं जो आने वाला था। अब उसने चुने हुए लोगों के लिए ऐसा किया। अब हम ये जानते हैं उसने चुने हुए के लिए ऐसा किया। अब केवल चुने हुए के लिए ही वे वही हैं जिन्होंने जीवन के इस जीवाणु को स्वीकार किया था। वे ही थे जो उसे देखने के लिए पहले से ठहराए गए थे। वे ही एक थे। हम सब यदि हम बाइबल पर विश्वास करते हैं तो हमें पहले से ठहराए जाने पर विश्वास करना होगा। समझे, यह सही बात है। ना ही परमेश्वर चाहता है कि कोई भी कष्ट से जाना चाहिए, लेकिन वो जानता था कि कौन इसे करेगा और कौन नहीं करेगा। उसने मिस्र के विनाश होने के दिनों में उसके चुने हुए लोगों की भी चिंता की। वे वहाँ मिस्र में थे और गुलाम बन गए थे। मूसा के दिनों में उसने लोगों की चिंता की। उसने उनके लिए क्या भेजा, एक भविष्यवक्ता को? फिर से क्या ये सही है? और उसने उसके लोगों को अविश्वास करने वाले संसार से अलग कर दिया उस दिन के आने वाले न्याय से। क्या उसने ऐसा किया? उसने चिंता की जब मिस्र ने अपने पापों का ढेर लगाकर बहुत ही ऊंचा कर दिया, इतना तक कि परमेश्वर को न्याय को भेजना पड़ा था, क्योंकि उसने पहले ही अब्राहम को बताया था और मैं उस राष्ट्र से निपटूंगा। तो उन सब पर अपने क्रोध को डालने की बजाय उसने उनकी चिंता की। उसने उनके लिए उसकी चिंता को भेजा। उसने उनके लिए उसके सहायक को भेजा। उसने अपना वचन उनके पास भेजा और वो हमेशा ही अपने वचन को अपने भविष्यवक्ता के द्वारा भेजता है, जैसा उसने नूह के समय में किया था। उसने नूह के दिनों में भी यही काम किया। एली के दिनों में, मूसा के दिनों में हम देखते हैं कि उसने उसी बात को किया। उसने उनके लिए अपने भविष्यवक्ता को भेजा और उन्होंने खुद को अविश्वास से अलग किया। अब बाहर निकलने के लिए यही वो तरीका है। इसे विश्वास करने का यही वो तरीका है। उन्होंने मूसा पर विश्वास किया कि वो एक फिरौन की आंखों में वह एक कट्टरपंथी था, वो एक जादूगर था, वो एक पाखंडी था, वो कुछ तो भयानक था। लेकिन लोगों के लिए जो चुने हुए थे, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार बाहर आए थे, मैं उन्हें बाहर लेकर आऊंगा, वह उनके लिए एक भविष्यवक्ता था। वो परमेश्वर का ठहराया हुआ जरिया था और वो ध्यान दे, उन्होंने उस पर विश्वास किया और वे उस दिन के न्याय से बच निकले थे। उन्होंने मूसा पर विश्वास किया और उसने कहा, उसने उनको बाहर लाने के लिए उनकी भी चिंता की और उसने उन्हें बाहर निकलने के बाद उनकी यात्रा में उनकी चिंता की। आमीन। जैसे शारीरिक में था, यह आत्मिक क्षेत्र में है। उसने चिंता की क्यों? उसने हर एक चीज का प्रयोजन किया जो उनकी आवश्यकता थी जब वे उनकी यात्रा में थे। क्या उसने किया? उसने उन्हें चंगाई दी जब वे बीमार थे। उसने चंगाई का प्रयोजन किया। उसने उनकी बीमारी के लिए एक जरिए का प्रयोजन किया। उसने एक पीतल के सर्प का प्रयोजन किया जिससे कि वे उस पीतल के सर्प की ओर देख सके जो पाप का प्रतीक था और चंगे हो जाए। जब वे मार्ग में थे तब उसने उन्हें खिलाया। जहाँ कोई रोटी नहीं थी उसने आसमान से रोटी को बरसाया, उसने उन्हें खिलाया। इतना ही नहीं, लेकिन उसने उन्हें कपड़े पहनाए। यह दिखाता है कि वह उन लोगों की चिंता करता है जो चिंता करते हैं। यदि वे अंगीकार करने और पश्चाताप करने और विश्वास करने और स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, तो परमेश्वर चिंता करता है। लेकिन आपको पहले चिंता करना होगा, आपको उसे स्वीकार करना होगा जिसे उसने आपके लिए भेजा था। उसने उन लोगों की इतनी चिंता की कि वे इतने निश्चित हो गए होंगे कि कुछ भी गलत नहीं होगा। उसने अग्नि के स्तंभ के चिन्ह के द्वारा उसके भविष्यवक्ता को प्रमाणित किया ताकि लोग देख सके कि यह ऐसे ही साथ साथ कोई यहाँ मनुष्य नहीं चल रहा था, ये तो परमेश्वर ही था जो ठीक उसके ऊपर था। ये वही था जो मार्ग में नेतृत्व कर रहा था। परमेश्वर उन लोगों की चिंता करता है जो चिंता करते हैं। परमेश्वर उन लोगों की चिंता करता है जो उसके लिए चिंता करते हैं। इसलिए उसने इस व्यक्ति को प्रमाणित किया और साबित किया कि वो परमेश्वर का दास था, उनके लिए एक अग्नि के स्तंभ को भेजने के द्वारा ताकि उन्हें उसी देश की ओर अगुवाई करे। और वे जानते थे जब तक ये अग्नि का चिन्ह और बादल का स्तंभ और आग का वे नेतृत्व कर रहे थे। उसने कहा कि उसने अग्नि और बादल के स्तंभ को नहीं उठाया। वो वर्षों और वर्षों और वर्षों तक जंगल में उनके साथ था, 40 वर्ष क्या ये सही है? उस अग्नि के स्तंभ ने उनका नेतृत्व किया। हम अपने 33वें वर्ष को छोड़ने जा रहे हैं, इससे 7 वर्ष दूर यह उसी का नमूना होगा। तो ठीक है, एक अग्नि के स्तंभ ने उनका नेतृत्व किया, उसने उनकी चिंता की और उसने उनकी इतनी चिंता की इतना तक कि उसने उन्हें केवल यही नहीं बताया कि ये कोई वैज्ञानिक चीज नहीं थी या ऐसे कोई भूल से नहीं हुआ, लेकिन उसने संदेश को प्रमाणित किया इसे साबित करते हुए। उसने यहाँ तक एक महिला के लिए भी बहुत चिंता की जो एक बाहरी महिला थी, एक इजरायली नहीं थी, वो उस झुंड से संबंधित नहीं थी, लेकिन वो एक बाहरी महिला थी, प्रेस्बिटेरियन, मेथोडिस्ट या ऐसे ही कुछ, वह किसी और पक्ष की थी। लेकिन जब उसने सुना, उसका नाम राहाब था, वह रह रही थी, वह एक वेश्या थी, लेकिन जब उसने सुना कि कैसे परमेश्वर उस अग्नि के स्तंभ में था और उनका नेतृत्व कर रहा था, तो उसने कहा आओ परमेश्वर के लिए पुकारें, और उसने उन वेदियों पर दया दिखाई जो उस देश को देखने के लिए आए थे, और क्योंकि राहाब ने उसकी और उसके लोगों की चिंता की, परमेश्वर ने उसकी चिंता की, इतना तक कि ये वेश्या जो उसके जीवन को मसीह के लिए दे देती है, क्योंकि उसने एक अलौकिक परमेश्वर के चिन्ह को देख लिया था और उसने उसके संप्रदाय के ठीक सामने उसके देवताओं की सेवा की थी। लेकिन जब उसने इस महान अलौकिक चिन्ह को देखा तो वो रो पड़ी और दया के लिए मांगने लगी और अपने परिवार के दया के लिए मांगा, और परमेश्वर ने उसके लिए इतनी चिंता की कि पूरा शहर एक दूसरे के ऊपर ढेर हो गया, लेकिन उसके घर की एक चट्टान भी नहीं हिली। वो चिंता करता है, भले ही वह बाहरी महिला थी, वह उस समय उस झुंड में नहीं थी, लेकिन उसने चिंता की। वह हमेशा चिंता करता है। उसने एलिया की चिंता की जब वो और केवल वो अकेला परमेश्वर की चिंता की। हालेलुया, यही है वो जहाँ यह लेकर आता है। अपनी चिंताओं को उस पर डाल दो, क्योंकि वह तुम्हारी चिंता करता है। पतरस चुने हुए प्राचीनों से बात कर रहा है, प्राचीन और कलीसिया में। उसने कहा अपनी चिंताओं को उस पर रखो, क्योंकि वह तुम्हारी चिंता करता है। सब कुछ वहाँ रख दो, क्योंकि तुम परमेश्वर के सामने साफ हो, तुम परमेश्वर के सेवकों की नाई चलते हो। परमेश्वर ने एलिया की चिंता की, क्योंकि एलिया ने परमेश्वर की चिंता की थी। दूसरे सारे प्रचारकों ने उस दिन के दर्शन की दृष्टि को खो दिया था, परमेश्वर की इच्छा और उसके वचन के प्रति प्रेम को खो दिया था, और ये सब आधुनिक हो गए थे। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इजाबेल उनके लिए कितनी आधुनिक थी, उस देश की पहली महिला। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कितने दूसरे प्रचारक महिला को कैसे व्यवहार और कार्य को करने की अनुमति देते हैं। एलिया प्रभु के नाम में इसका विरोध करने के लिए बुलाया गया। उसने परमेश्वर ने जो कहा उसकी चिंता की, और तब परमेश्वर जो एलिया ने कहा उसकी चिंता की, क्योंकि उसने प्रभु के वचन को कहा। परमेश्वर चिंता करता है जब आप चिंता करते हैं, लेकिन पहले आपको चिंता करना होता है। जी हाँ, ध्यान दें, उसने चिंता की जब उसने एलिया को उसके वचन के द्वारा बुलाया, संप्रदाय के बीच में से बाहर बुलाया। ऐसा दिखाई दिया कि उसे भूखों मरना होगा, क्योंकि वहाँ कोई दशवांश और प्रेमदान नहीं आते होंगे। लेकिन उसने एलिया की इतनी चिंता की, उसने उस समय के दौरान उसे भूखा नहीं रखा। वो परमेश्वर के वचन का पालन कर रहा था। उसने कौओं को उसे खिलाने का आदेश दिया। उसने एलिया की चिंता की, क्योंकि एलिया ने उसकी चिंता की थी और वो वचन है। उसने दानियल की चिंता की, जब दानियल ने परमेश्वर के वचन की पर्याप्त चिंता की कि वो सच्चाई से प्रार्थना करता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि राजा ने क्या कहा, मैं ऐसा और नहीं करना चाहता हूँ। एलिया ने तब किवाड़ों को खोल दिया और यरूशलेम की तरफ देखा और प्रार्थना की। एलिया ने परमेश्वर की चिंता की और परमेश्वर ने एलिया की चिंता की। दानियल ने परमेश्वर के वचन की चिंता की और परमेश्वर ने एलिया की चिंता की। उसने एक अग्नि के स्तंभ को भेजा, जिससे वो शेर डरकर उससे दूर रहा, और सारी रात भर वो वहाँ पर रहा। परमेश्वर ने चिंता की, क्योंकि दानियल ने चिंता की थी। जी हाँ श्रीमान, उसने सच्चाई से प्रार्थना की, यह जानते हुए कि इससे बुरा होगा, उसे शेर के गुफा में फेंका जाएगा यदि उसने संप्रदाय के आदेशों का उल्लंघन किया। लेकिन उसने खिड़की के पास घुटने टेके, मनुष्य ने जो कहा उससे नहीं डरते हुए उसने खिड़कियों को खोले रखा, क्योंकि यह परमेश्वर की आज्ञा थी, और उसने अपने परमेश्वर से हर दिन सच्चाई और ईमानदारी से प्रार्थना की। उसने परमेश्वर के लिए और उसकी आज्ञाओं की चिंता की, और परमेश्वर ने पीछे मुड़कर और दानियल की चिंता की और उसके आदेश उसके दृढ़ बने रहने की। दानियल ने परमेश्वर और उसके वचन की चिंता की, और परमेश्वर ने दानियल और वचन के प्रति दृढ़ बने रहने की चिंता की। वह इसे हर समय करेगा। आमीन। उसने इब्रानी बच्चों की चिंता की जब उन्होंने सच्चाई से आदर किया और उन विश्वास की चिंता की जिसे उन्हें एक बार उन्हें सौंपा गया था, परमेश्वर का वचन। उसने उनकी चिंता की इतना तक कि जब उन्होंने तुरी को फूका, उनके पास परमेश्वर से एक आज्ञा थी, किसी भी पराय देवता, किसी भी मूर्तियों के सामने मत झुकना, ना ही झुकना और ना ही उनकी आराधना करना, यह वो आज्ञा थी। और जब उन्होंने तुरी को फूका और कहा हम उन्हें भट्टी के अंदर फेंक देंगे जो नहीं झुकते हैं, उन्होंने इतनी चिंता की इतना तक कि उन्होंने अपनी पीठ को मूर्ति की ओर घुमा दिया। यह सही बात है। परमेश्वर ने उनकी इतनी अधिक चिंता की कि जब गर्मी बढ़ने लगी तो उसने चौथे व्यक्ति को अग्नि की भट्टी में नीचे भेज दिया और उन्हें ठंडा रखा। उसने चिंता की क्योंकि उन्होंने चिंता की थी। यदि आप किसी संप्रदाय को पकड़े रहना चाहते हैं तो परमेश्वर चिंता नहीं करता है कि आप क्या करते हैं। यदि आप ऐसा करना चाहते हैं तो वो आपकी कभी भी चिंता नहीं करेगा क्योंकि आप वो कर रहे हैं जो मनुष्य ने कहा। लेकिन यदि आप परमेश्वर के वचन को पकड़ेंगे, आप सच्चाई से अंगीकार करते हैं और विश्वास करते हैं कि परमेश्वर एक चंगा करता है, वो कल आज और युगानुयुग एक सा है, वो आपकी चिंता करेगा। तब उसने चिंता की, उसने इब्रानी बच्चों की चिंता की और उसने उनके लिए चौथे व्यक्ति को भेजा जो मसीह था, हम ये जानते हैं। जब वो कोड़ी चिल्लाने लगा, हे प्रभु, 10 कोड़ी वहाँ आकर और सच्चाई से चिल्लाने लगे, प्रभु हम पर दया करो, उन्होंने उनके लिए बहुत अधिक चिंता की जो उनके खुद के लिए चाहते थे। उनके पास उनके लिए चिंता करने की सामर्थ्य थी। उसने कोड़ी की चिंता की क्योंकि कोड़ी ने अपना अंगीकार करके चिंता की, उसे प्रभु कहकर बुलाया। उसने चिंता की जब सेनापति ने अपने बारे में इतनी अधिक चिंता की कि यीशु से मदद मांगने के लिए कहला भेजा, जब सेनापति ने उसके विश्वास के द्वारा दिखाया उसके रोम की मूर्तियों की निंदा की और इतनी अधिक चिंता की, लोगों के गवाही के द्वारा उसके लिए संदेश को भेजता है कि आकर उसके पुत्र को चंगा करे। यीशु ने उसे चंगा करने की बहुत अधिक चिंता की। वो चिंता करता है जब आप चिंता करते हैं, हालांकि आपको पहले चिंता करना है। उसने चिंता की, उसने चिंता की जब याइर ने यीशु के बारे में बहुत अधिक चिंता की। वह एक गुप्त विश्वासी था, उसने विश्वास किया था कि वह सही था, लेकिन उसके अपने संप्रदाय में बने रहने के कारण वह बाहर आकर और इसे अंगीकार नहीं कर सकता था। लेकिन जब उसकी छोटी बेटी बीमार हो गई और उसकी मृत्यु हो गई, तो याइर जानता था अपनी बेटी की मौत को देखते हुए या उसे व्यक्त करने की चिंता की। उसने उसके आसपास के अविश्वासियों की निंदा करने की इतनी अधिक चिंता की और अपनी छोटी सी मंत्री पद की टोपी को नीचे रखा और निकल गया और यीशु को ढूंढा। जब याइर ने दिखाया कि उसने चिंता की, तो यीशु ने दिखाया कि उसने इतनी अधिक चिंता की कि उसने आकर और उसे मृतकों में से जीवित किया। अपनी चिंताओं को उस पर डाल दो क्योंकि वो चिंता करता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह क्या है, वो चिंता करता है। उसने इतनी अधिक चिंता की जब वहाँ कोई एक ऐसी आज्ञा भी नहीं थी, ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया था, उसने इसका कभी भी जिक्र नहीं किया था, लेकिन उसने चिंता की क्योंकि वो छोटी स्त्री प्रार्थना की पंक्ति में नहीं जा सकी थी और उसने कहा यदि मैं उसके वस्त्र के छोड़ को छू सकूं तो मैं उस पर विश्वास करती हूं। उसने उस पर उसके विश्वास करने की चिंता की, यहां तक कि वो मुड़ा और उसे श्रोता गृह में से बुलाया और उसे बताया कि उसके विश्वास ने उसे चंगा कर दिया है। उसने चिंता की क्योंकि स्त्री ने चिंता की थी। उसने चिंता की जब उस दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त व्यक्ति ने उन शैतानों के समूह की बहुत अधिक चिंता की उस विरोध के नीचे, ताकि छटपटाकर वे कब्र के नीचे के शैतान बाहर निकलकर और यीशु के पास आए और खुद को उसके सामने दंडवत करें। जब वो शैतान का समूह, वे शैतान कभी भी वापस नहीं आते यदि उस शैतान के समूह ने वहाँ उससे मिलने के लिए अपना रास्ता नहीं बनाया होता था। और जब उसने उस प्रयास को करने के लिए बहुत अधिक चिंता की, तो उसके विश्वास में खड़ा था। यीशु ने उससे शैतानों के इस समूह को बाहर उसमें से निकालने के लिए पर्याप्त चिंता की और उसकी दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त परिस्थिति चली गई थी। उसने चिंता की जब आप चिंता करते हैं। जी हाँ श्रीमान, जब आप चिंता करते हैं तो वो चिंता करता है। अब जब अंधे मनुष्य ने येरियो के फाटक पर चिल्लाया, हे यीशु, यहूदी होने के नाते रूढ़िवादी यहूदियों के सभा स्थल में अच्छी खासी भीड़ थी, लेकिन जब उसने कहा इतना शोर क्या है, उन्होंने कहा नासरत का यीशु गुजर रहा है, एक भविष्यवक्ता। कहा यीशु, हे दाऊद के पुत्र, ओह उसके पास्टर और याजकों के लिए क्या ही ताड़ना थी जो वहाँ पर खड़े थे, लेकिन उसने चिंता नहीं की कि क्या पास्टर, याजक और किसी और के कहने की वह रुचि रखता था, और उसने अपनी दृष्टि को पाने के लिए बहुत अधिक चिंता की थी, इसलिए वो पुकारने लगा। जब वो अंधा मनुष्य बैठा था और पुकारने के लिए उसने बहुत अधिक चिंता की थी, तो यीशु ने उसे चंगा करने की बहुत अधिक चिंता की। वो कल, आज और युगानुयुग एक सा है। जब आप चिंता करते हैं तो वो चिंता करता है, लेकिन आपको पहले चिंता करना है। आपको ये साबित करना होगा कि आप चिंता करते हैं। उसने इतनी अधिक चिंता की, इतना तक कि जब एक स्त्री जो छह पुरुषों के साथ रहती थी उसके मसीहत के परखने के चिन्ह को पहचान गई, और उसने इतनी अधिक चिंता की, इतना तक उसने उसके हरेक पाप को क्षमा कर दिया और उसे पानी को दिया। वो वहाँ उस पानी को खींचने नहीं आई थी, इसलिए उसने पहचान लिया। उसने कहा, श्रीमान, मैं मानती हूँ कि तुम एक भविष्यवक्ता हो। जब उसने स्त्री को बताया कि उसके साथ क्या गलत था, और वो उस दिन के आने के लिए रुकी हुई थी, केवल वो सारे कलीसिया के समुदाय में रहते आई थी, उसे ऐसा करने का मौका नहीं मिला था। लेकिन जब उसने एक मनुष्य को देखा जो उसे बता सकता था कि उसके साथ क्या गलत था, उसने कहा, श्रीमान, मैं मानती हूँ कि तुम एक भविष्यवक्ता हो। मैं जानती हूँ कि जब मसीहा आएगा वह इन बातों को करेगा। उसने कहा, मैं वो हूँ, यही बहुत है। स्त्री ने चिंता की, उसने अपने पानी के घड़े को छोड़ दिया और वो शहर की ओर चली गई, और उसने कहा, आकर एक मनुष्य को देखो जिसने मुझे उन बातों को बताया जो कुछ मैंने किया है। क्या ये वही मसीहा तो नहीं है? वो कुछ राहब की तरह ही थी। उसने चिंता की, इच्छा तक उसने पूरे शहर को जागृत कर दिया। उसने चिंता की क्योंकि कुछ किया गया था, प्रमाणित वचन को पूरा किया गया था और वास्तविक पक्का बनाया, और उसने चिंता की। उसने परवाह नहीं की कि पुरुषों ने क्या कहा या किसी और ने क्या कहा, उसने इसे देखा था। जब ये घटित हुआ वो वहाँ पर थी। स्त्री ने चिंता की और उसने अपने लोगों की चिंता की, इतना तक कि उसने उनमें से हरेक को बताया और इसके सारे शहर को यीशु मसीह पर विश्वास करने का कारण बना दिया। स्त्री ने चिंता की और उसने चिंता की, निश्चय ही उसने की। यीशु ने आज के संदेश के लिए इतनी अधिक चिंता की ताकि इन उन्हीं कामों को पूरा करे जैसा उसने कहा था, इतना तक कि वह मर गया और फिर से जी उठा ताकि उन लोगों को पवित्र आत्मा के द्वारा भेजे वो सहायक उसकी सेवकाई को दिखाने के लिए कि वो अब भी जीवित है। उसने बहुत अधिक चिंता की, क्या हम नहीं करेंगे? यही वो बात है, क्या हम चिंता नहीं करेंगे? वो इस सेवकाई के लिए मरा, वह इसके लिए मरा जिससे कि पवित्र आत्मा यहाँ इस दिन के लिए हो सके ताकि इन बातों को दिखाए। उसने आपकी चिंता की, उसने इसे यहाँ लाने की चिंता की, उसने उस बयान को देने की चिंता की, उसने चिंता की क्योंकि उसने आपसे प्रेम किया। उसने इसे करने के लिए बहुत अधिक चिंता की, इसके लिए पवित्र आत्मा को भेजा, आज की इस सेवकाई को बनाता है। इसी तरह से उसने साबित किया, उसने उस दिन की चिंता की क्योंकि वो इसे प्रमाणित करने आया, जो परमेश्वर ने कहा वो होगा। इसी कारण से स्त्री ने उसे पहचान लिया। उसने कहा, मैं जानती हूँ जब मसीहा आएगा, वो एक भविष्यवक्ता है, जब मसीहा आएगा तो वो हमें इन बातों को बताएगा। देखो, उसने परमेश्वर के वचन के बारे में इतनी अधिक चिंता की ताकि वो इसे उस महिला को प्रमाणित करे। आमीन। अब उसने पवित्र आत्मा को भेजा जिससे इस मानसिक विचारधारा के इस दिन में, जिससे वो उसी पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जरिए से साबित कर सके कि वो अब भी मसीहा है, इसे उसी तरह से साबित करता है। वो कल, आज और युगानुयुग एक सा है। अब सवाल ये है कि क्या आप चिंता करते हैं? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? ये यहाँ पर है, ये बार बार और हर बार साबित होता आया है। क्या आप इतना अधिक चिंता करते हैं कि इस पर विश्वास करें? क्या आप इतना अधिक चिंता करते हैं कि अपने पापों को स्वीकार करें कि आप गलत हैं, अपने अविश्वास को अंगीकार करें और इसे स्वीकार करें? क्या आप इतना अधिक चिंता करते हैं कि इसे स्वीकार करें? उसने मरने और फिर से जी उठने के लिए इतनी चिंता की ताकि इसे आपके लिए लेकर आए। क्या आप इसे स्वीकार करने के लिए अधिक चिंता करते हैं? मैं सोचता हूँ कि यह नूह के समय से होते हुए पूरी तरह से साबित हुआ है, बहुत ही पहले वह उत्पत्ति से होते हुए पूरी तरह से साबित हुआ है। हमारे पास इस सब को लेने का समय नहीं है, लेकिन आप देखते हैं कि वह आपकी चिंता करता है और वो मरा जिससे कि आप चिंता कर सकें, जिससे कि आपके पास एक जरिया हो सके, और उसने उस जरिए को लाया है। उसने कहा कि वास्तव में वो जरिया क्या होगा, क्या करेगा, और अब यहाँ आज वो दिखा रहा है, यही वो सत्य है। अब इस बुरे घड़ी में जिसमें हम रह रहे हैं, क्या आप इसके बारे में इतनी अधिक चिंता करते हैं, अपने पूरे हृदय से इसे विश्वास करते हैं? चाहे आप एक प्रार्थना पंक्ति में आए या जो कुछ भी है, ये वो नहीं है। क्या आप चिंता करते हैं? अपनी चिंताओं को उस पर डाल दो, वो आपकी चिंता करता है। इसके प्रति ईमानदार बने रहे। आपको ईमानदार बनने के प्रति अधिक चिंता करना होगा, क्योंकि उसने अपने एक प्रमाणित वचन के द्वारा साबित किया है कि वो चिंता करता है। उसने इसे भेजने की प्रतिज्ञा की है, वो इसे कर चुका है। उसने वचन में प्रतिज्ञा की है, यहाँ है ये। वो चिंता करता है। अब आपके बारे में क्या? वो है, उसके बाद आपको चिंता करना चाहिए। उसने इतनी अधिक चिंता की, उसने इतनी अधिक चिंता की कि आपके लिए हर एक शत्रु को जीत लिया। आपको इतना ही करना है कि सच्चे बने रहें और इसे विश्वास करें। उसने मौत पर विजय प्राप्त की। जय पाने के लिए मृत्यु कुछ भी नहीं है, इस पर पहले ही जय पा लिया गया है। जय पाने के लिए बीमारी कुछ भी नहीं है, यह मसीह के जीतने के लिए नहीं है, इसे पहले ही जीत लिया गया है। मुझे बस इसे विश्वास करने के लिए अधिक चिंता करना है। क्या आपको डर लगता है कि किसी और ने आपको जो बताया है? क्या आपको डॉक्टर के निरीक्षण से डर लगता है? क्या आपको डर लगता है कि कलीसिया आपको क्या कहेगी? क्या आप शैतान का आमना सामना करने के लिए खड़े रहने से डरते हैं? कहें, मैंने अपने पापों को अंगीकार किया है, मैंने सारी चीजों को एक तरफ रख दिया है, मैंने हर एक वचन पर विश्वास किया है, मैं यहाँ हूँ प्रभु, मुझ में एक चिंता को निर्माण करें। आपने मेरी चिंता की, मैं आपकी चिंता करता हूँ। मैं उस महिमा में पुराने गीत के बारे में सोचता हूँ, वो आपकी चिंता करता है पूरी तरह से, धूप या छाया में वह आपकी चिंता करता है। आइए अब अपने सिर को झुकाएं, हम बस और आगे नहीं जा सकते हैं। वो तुम्हारी चिंता करता है, वो तुम्हारी चिंता करता है। धूप या छाया में से होते हुए वो तुम्हारी चिंता करता है। आइए हम इसे उसके लिए गाएं, अपने सिर और हमारे हृदय को झुकाने के साथ। वो चिंता करता है। आइए देखें कि उसने क्या किया है। वो तुम्हारी चिंता करता है। धूप या छाया में से होते हुए वो तुम्हारी चिंता करता है। वो चिंता, अब यदि आप चिंता करते हैं तो इसे गाते समय अपना हाथ उठाएं। वो तुम्हारी चिंता करता है। धूप या छाया में से होते हुए वो तुम्हारी चिंता करता है। स्वर्गीय पिता, इस समय पर, इस दिन की घड़ी के चढ़ने में हम अपने हृदय की गहराई से अंगीकार को कर रहे हैं, जिसे हम अब वचन के द्वारा जानते हैं कि आप हमेशा ही आपके अपनों की चिंता करते हैं। लेकिन परेशानी यह है, क्या हम चिंता करते हैं? क्या हम केवल शिक्षा को पाना चाहते हैं, कहते हुए ठीक है मेरे पास डॉक्टर की डिग्री है या LLD है, या दवा के पर्चे को जानना है या इसे लेना नहीं है? परमेश्वर, मैं आज प्रार्थना करता हूँ कि हम में से हर एक मसीह के दुखों को अपने हृदय में लेकर जाए, उसकी सतावट को अपने ऊपर ले, यह समझते हुए कि हमें अवश्य उसके नाम की निंदा को सहन करना ही है, जिसे हमें सहन करना अवश्य है, और होने पाए हम वापस उस पुराने समय के चेलों के समान हो। हम आनंदित हैं कि हमें उनके नाम की निंदा को सहन करने का सौभाग्य मिला है, इसे प्रदान करें पिता। मैं बीमारों के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं प्रभु, अपने हाथों को उन पर रखते हुए। उनमें से बहुतों ने, उन्होंने अपने हाथों को ऊपर उठाया है और बहुतों के लिए प्रार्थना की जाएगी, और वे प्रार्थना कार्ड को पकड़े हुए हैं, और कुछ लोग यहाँ पर हैं जो प्रार्थना कार्ड के समय पर नहीं आ पाए, लेकिन वे विश्वास करने जा रहे हैं प्रभु। वे उनके हाथों को ऊपर उठा सकते हैं। मुझे ऐसा दिखाई देता है सारी सभा के लोग, उनमें से बहुत से बीमार हैं, यहाँ पर ये रुमाल रखे हुए हैं, अभिषिक्त वचन के द्वारा आपकी दैविक उपस्थिति को महसूस करते हुए उन्हें चंगा करें प्रभु, प्रदान करें कि उनके विनती का उत्तर दिया जाए। और अब रुमाल से लेकर सभा के लोगों की ओर, उन मनुष्यों की ओर जो वहाँ पीड़ित बैठे हुए हैं, ओ प्रभु की उपस्थिति, इसे आने दीजिए पिता, और उन सभी को चंगा करें। क्या आप आज सुबह दैविक अनुग्रह की उपस्थिति में, जब हम अंगीकार करते हैं, प्रभु मैं आपका सेवक, मैं एक अयोग्यता का अंगीकार करता हूँ, मेरे पास एक भी चीज नहीं है प्रभु जिसे मैं आपको योग्यता के रूप में सामने रख सकता हूँ। हम अयोग्य हैं, न ही हम में से कोई भी ऐसा कर सकता है प्रभु। हम उन चीजों के लिए योग्य नहीं है जिन्हें हम मांगने जा रहे हैं, लेकिन प्रभु हम यीशु को जानते हैं कि यीशु वहाँ दूर ऊपर उस महिमा में चला गया और वहाँ एक स्थान को तैयार कर रहा है ताकि आकर और हमें अपने निमित्त अपने आप में ग्रहण करे। और उसने हमें बताया कि वो हमारे लिए एक सहायक को भेजेगा जो कि पवित्र आत्मा होगा और वो अपने काम को करेगा और वो हमेशा के लिए हमारे साथ बना रहेगा। हे पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा, आज सुबह नए सिरे से हमारे ऊपर आए और अपनी उपस्थिति को उसी तरह से प्रमाणित करें प्रभु जो आपने किया जब आप यहाँ धरती पर चले, जिससे ये श्रोतागण जान सके कि आप इस अंतिम दिन में यहाँ पर हैं ताकि अपने वचन को साबित करें और ये साबित करने के लिए जैसा कि ये लूत के दिनों में था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के आने पर भी होगा। प्रभु ये आपके आदर और महिमा के लिए हम इसे मांगते हैं जब हम अपने अंगीकार के साथ खुद को आपके लिए सौंपते हैं। अपने लहू के द्वारा हमें शुद्ध करें प्रभु, हमें वचन के जल से धोएं और हमें लहू से शुद्ध करें और प्रभु हमें उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करें, जैसा कि पत्रस ने कहा जो आज सुबह वचन में पढ़ा, अविश्वासी संसार के लिए उदाहरण बने, क्योंकि हम इसे यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं अब बहन से पूछूंगा और पियानो, अब कुछ क्षण के लिए, आज रात हमें जरा देर होगी, लेकिन ओह मेरा भी ज्यादातर आना नहीं होता है, अब हमारे साथ थोड़ा सा धैर्य रखें। अब हर एक जन बस कुछ ही मिनटों के लिए बना रहे, हम सभी लोगों के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। बिली, बिली पॉल, वो कहाँ पर है? तुमने कहाँ दिए हैं? तुमने प्रार्थना के कार्ड कहाँ दिए हैं? ये किस तरह का था? बी, एक से लेकर 100। आइए अब बी में से कुछ को लेंगे और देखें कि क्या वो हमें परख को देगा या किस तरह से है। देखें कि वो हमारे साथ यहाँ है या नहीं है, बस उससे मांगे। आपको विश्वास है कि वो इसे करेगा? मैंने प्रचार किया है, मैं अभिषिक्त था, लेकिन अब मैं इसी अभिषेक से यहाँ तक प्रचार किया है, आप देखते हैं। और आइए लोगों को खड़ा करेंगे, तो हम उन सब के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। किसी भी तरह आप एक संख्या से शुरू करेंगे। बी कौन है? संख्या एक, खड़े हो जाएं जिनके पास प्रार्थना कार्ड है। नहीं, मैं बस उन्हें सीधे यहाँ पर लाने जा रहा हूँ, वे इस गलियारे से बाहर निकलकर और यहाँ आ जाएं। बी आ जाए, नंबर एक, जिसके पास प्रार्थना कार्ड नंबर एक है। आपका मतलब है कि ये इमारत में नहीं है? तो ठीक है, हम आरंभ करेंगे। ओह मुझे क्षमा करें महिला, तो ठीक है, अच्छी बात है। बी संख्या दो, तो फिर यदि हम पहले से ही एक से आरंभ कर चुके हैं तो बी नंबर दो आ जाए। ये किसके पास है? क्या आप अपना हाथ उठाएंगे ताकि हम इसे देख सके? यहाँ आ जाए महिला, ठीक है, यहाँ पर। तीन, किसके पास तीन है? आइए हमारी पंक्ति को वहाँ दूर दीवार से होते हुए चालू करें, हम बढ़ते हुए या कहीं से तो वापस आ जाएंगे। तो ठीक है, प्रार्थना कार्ड नंबर तीन, कौन आएगा? क्या यह महिला आ रही है? बहन मुझे क्षमा करें, मैंने आपके हाथों को नहीं देखा। नंबर चार, किसके पास प्रार्थना कार्ड नंबर चार है? क्या आप अपना हाथ उठाएंगे ताकि मैं देख सकूं कि आप कौन हैं? वो वहाँ पीछे वो व्यक्ति है, अश्वेत भाई, क्या आप यहाँ आएंगे श्रीमान? नंबर चार। नंबर पाँच, किसके पास नंबर पाँच है? वो वहाँ पीछे सज्जन व्यक्ति, क्या आप यहाँ आएंगे? क्या आप आएंगे? नंबर छह, किसके पास प्रार्थना कार्ड छह है? क्या आप अपना हाथ उठाएंगे? यहाँ पर है, तो ठीक है, छह महोदय। सात, अब इससे आप बस भीड़ होने से बच सकते हैं। सात, तो ठीक है, यहाँ पर आ जाए। सात, अब नंबर आठ, अब आप यहाँ पर आ जाए श्रीमान। नंबर नौ, तो ठीक है श्रीमान। नंबर दस, तो ठीक है, वो छोटा लड़का। जब हम इसके बारे में सोच रहे थे, वो सबसे प्यारी चीज, जब मैं अंदर आया, उस छोटे लड़के ने, जो बस मुझे इसके विषय में सोचने के लिए लगभग मोहित कर देता है, कुछ समय पहले एक छोटा लड़का खड़ा था, उसने कहा, भाई ब्रैनम, क्या आप मेरे लिए कुछ तो करेंगे? बस जो लगभग छोटे से आकार का किशोर है। मैंने कहा, वो क्या है पुत्र? उसने कहा, मेरी माँ के लिए प्रार्थना करें। कहा, वो ऐसे ही व्यर्थ में परमेश्वर का नाम लेती है और उसका बहुत ही भद्दा जीवन है। मैंने कहा, तुम कहाँ रहते हो? यहाँ इस शहर में? कहा, हाँ श्रीमान। वो चाहता था कि उसकी माँ एक भली महिला बने, और कोई आश्चर्य नहीं, यशाया ने कहा, एक बच्चा उनका नेतृत्व करेगा।
नंबर टेन, नंबर टेन,
नंबर दस, नंबर क्या नंबर 10 नहीं है, ठीक है, नंबर 11 ठीक है, नंबर 12 नंबर 12 तो ठीक है, नंबर 13 14 ठीक है, 15 मैंने इसे नहीं देखा, नंबर 15 16 तो ठीक है, इस तरह से घूम कर आए श्रीमान, यदि आप करेंगे तो 16 17 18 18 मैंने इसे नहीं देखा, ठीक है महिला या बहन, 18 ठीक है, अब उस तरफ आ जाओ महिला, अगर आप करेंगे तो आप उस तरफ से बाहर आ जाएं। अब देखें जब प्रार्थना पंक्ति लगाते हैं तो उनके लिए एक समय में इतने ही लोग खड़े रहना काफी है, जब प्रार्थना की पंक्ति कम होती जाती है देखो तब बिली पॉल या उनमें से कोई तो मंच पर यहाँ आ जाए, भाई नेविल, भाई नेविल, उसके कुछ देर बाद भाई नेविल आ जाए, जब आप उन्हें देखते हैं, अब जब आप भाई नेविल को देखते हैं कि वे प्रार्थना पंक्ति को तैयार कर रहे हैं, वह इस तरह से संकेत करेंगे क्योंकि मैं पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। अब ये व्यक्ति जो व्हील चेयर में है, आपको प्रार्थना कार्ड मिला है श्रीमान, उसके पास प्रार्थना कार्ड था तो ठीक है, अब आप उन्हें सीधे प्रार्थना पंक्ति में ले जा सकते हैं। अब क्या कोई ऐसा है जो यहाँ पर है जो आप उठ नहीं सकते हैं, कोई तो उनकी सहायता करे, यदि वे जब उनका समय आता है तो उन्हें देखें। अब आप बस सोचें, मैं यहाँ से आरंभ करूंगा जहाँ से मैंने छोड़ा था, मैंने वहाँ लगभग 18 या 20 से छोड़ा था, यहीं कहीं आसपास, उसके बाद आप वहाँ 21 22 से आरंभ करें, आप अपने स्थान को जानते हैं जैसा आप इसमें आते हैं। अब क्या आप चिंता करते हैं, क्या आपको विश्वास है कि उसने हमेशा ही चिंता की है, क्या आपको विश्वास है कि वो अभी चिंता करता है, यदि उसने एक बार चिंता की है तो वो हमेशा चिंता करेगा, आप ये विश्वास करते हैं? अब मैं चाहता हूँ कि हर एक जन बस बहुत ही आदर के साथ अपने स्थान पर रहकर और प्रार्थना करे, अब आप जो सभा के लोग हैं वो भी प्रार्थना करें। अब उसने कैसे चिंता की, क्योंकि वो और अधिक चिंता नहीं कर सकता है और ना ही कोई भी व्यक्ति या कोई भविष्यवक्ता कोई भी परमेश्वर की प्रतिज्ञा किए हुए कार्य की सीमाओं से बाहर नहीं जा सकता है, क्या ये सही है? अब मैं परवाह नहीं करता, हो सकता है कि आप प्रार्थना की पंक्ति में से 100 बार होकर निकले हों, लेकिन अब आप जो खड़े हैं और आप जो बैठे हुए हैं, यदि आपके जीवन में पाप है, अविश्वास है, इसे अभी अंगीकार करें, ऐसा किए बिना यहाँ आने की हिम्मत न करें। यदि आप यहाँ से होकर आ सकते हैं और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो एक मनुष्य कितना भी अभिषेक किया गया हो, वहाँ खड़ा होगा और आप पर हाथ रखे, आप निश्चित रूप से इससे 100 मील चूक जाएंगे जब तक आप इसे विश्वास नहीं करते हैं। आपको विश्वास करना ही है, आपको इसे अंगीकार करना ही होगा, आपको इसे करना होगा। देखो उसके बाद यदि आप यहाँ देखते हैं किस तरह से वहाँ, मैं आशा करता हूँ कि आपको तस्वीर मिल गई होगी, समझे, परमेश्वर के लिए यह पूरी तरह से असंभव है कि आपके लिए अपने वचन को न रखे, यदि आपने अपने वचन को परमेश्वर के लिए रखा है, समझे, यदि आप वास्तव में विश्वास करते हैं तो कोई भी आपको इस पर संदेह नहीं करवा सकता है, समय दूरी और कुछ भी आपको इस पर संदेह नहीं करवा सकता है, आप इसे विश्वास करते हैं, क्या आप इसे विश्वास करते हैं? अब मैं इस प्रार्थना पंक्ति को देखने जा रहा हूँ, सो जहाँ तक मैं जानता हूँ, यदि ये आदमी यहाँ पर है, मैं उसे जानता हूँ और मैं जानता हूँ, मैं वहाँ जीन स्लॉटर को जानता हूँ, मैं उसे जानता हूँ, उसके बाहर, और मैं नहीं जानता वे वहाँ किस लिए खड़े हैं, मुझे अंदाजा नहीं है कि वे वहाँ किस लिए हैं, परमेश्वर जानता है। और अब यदि आप सभी जानते हैं कि मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानता, तो अपने हाथ उठाएं, वहाँ जो वहाँ खड़े हैं, अब इस सभा के लोगों में कितने लोग जानते हैं कि मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानता, अपने हाथ उठाएं, अब कितने लोग जागरूक हैं कि यीशु मसीह आपके बारे में जानता है, और कितने लोग यह कहने की इच्छा रखेंगे, मैं विश्वास करता हूँ मेरे पूरे हृदय से कि यीशु ने मुझे चंगा किया जब उसे क्रूस पर चढ़ाया गया था, कलवरी पर, ये सही है, देखा। अब यदि वह पहले से ही कर चुका है, उसके बाद यह आपका विश्वास होता है कि इसे स्वीकार करें, अब वो उसे करने के लिए बहुत ही चिंता करता है, क्या आप इस संदेह को दूर रखने के लिए उतना अधिक चिंता करते हैं और इसे विश्वास करते हैं, उस पर अपनी चिंता को डाल दें, क्योंकि वो आपकी चिंता करता है। अब यदि आप बीमार हैं, यदि आप पीड़ित हैं, मैंने देखा है तो आप जानते हैं कि पवित्र आत्मा ने हजारों बार हजारों चीजों को कर चुका है और आप जानते हैं कमजोर और अपाहिज यहाँ तक कि मृत्यु होने पर भी एक व्यक्ति ठीक यहाँ मंच पर मर गया था। यहाँ हमारे सामने लगभग तीन हफ्ते पहले की बात है। उसकी पत्नी यहाँ एक पंजीकृत नर्स है। वो व्यक्ति ठीक तभी मर गया था। वो यहीं कहीं पर बैठा है। यहाँ उसकी पत्नी अभी बैठी हुई है और वो अभी यहाँ कहीं तो ऊपर है। हाँ, वो यहाँ खड़ा है। आंखें ऊपर की ओर चढ़ गई थी। वो इस तरह से काला पड़ गया था तो वहाँ नीचे गिरा पड़ा था और मैं नीचे चला गया और उसकी पत्नी ने उसकी जांच की। ना ही धड़कन, ना ही उसकी नाड़ी चल रही थी। मैंने अपने हाथ को उस पर रखा, वह चला गया था और तब यीशु मसीह के नाम में उसकी आत्मा को पुकारा और वो उठ खड़ा हुआ। देखा, देखा, ये क्या है? वो पुनरुत्थान और जीवन है। ये मैं नहीं था, वो सहायक था जिसने उस कार्य को किया। पवित्र आत्मा हमारे लिए बिचवाई को कर रहा था। देखा, हमने उसे स्वीकार किया है। अब यह उस पर है कि बिचवाई को करे। तब मैं कितना अधिक कर सकता? क्या परमेश्वर आपको आपकी इच्छा के विरुद्ध बचा सकता है? निश्चय ही नहीं। वह आपकी इच्छा के विरुद्ध आपको चंगा नहीं कर सकता है। आपको इसे विश्वास करना है। अब यह क्या होगा यदि वह साबित कर सकता है? यदि परमेश्वर मुझे एक दैविक दान के द्वारा करने देता है, आपको दिखाता है कि यीशु मसीह हमारे साथ है, कि यह सहायक यीशु मसीह है, वह वचन है। आदि में वचन था, क्या यह सही है? वचन परमेश्वर था और वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में रहा। और बाइबल ने इब्रानियों 4 में कहा, परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार से भी तेज है जो हृदय के विचारों को परखता है। क्या यह सही है? और यही है वो जो यीशु ने किया यह साबित करने के लिए कि वह अभिषिक्त वचन मसीहा था। ओ प्रभु, क्या आप उसे नहीं देखते हो? मसीहा क्या है? वो एक जो अभिषिक्त है। अभिषिक्त क्या? अभिषिक्त वचन, और वचन देहधारी हुआ था। वो अभिषिक्त वचन था। क्या आप देखते हैं भाई बहन? देखो, वो अभिषिक्त वचन है। और अब जब आप अपने आप को उसे समर्पित करते हैं, तब आप जो कुछ जानते हैं वो उससे परे आपको उपयोग करता है, साबित करता है कि वो अभी भी अभिषिक्त वचन है, एक हृदय के विचार को परखने वाला। और अब आप वहाँ बैठे हुए हैं। मैंने आज सुबह उस विषय को पहुँचा दिया है जब एक छोटी महिला ने चिंता की कि शायद वह प्रातः पंक्ति में नहीं जा रही थी, लेकिन उसने उसके वस्त्र के किनारे को छुआ और वो पीछे की ओर मुड़ा। क्या आप इसे विश्वास करते हैं? क्या आप विश्वास करते हैं कि इसे आज फिर से किया जा सकता है? हाँ, अब आप इसे कैसे छुएंगे? बाइबल ने कहा कि वो महायाजक है। ठीक अभी वो एक महायाजक है जो परमेश्वर के तेज के दाहिने हाथ पर बैठा है हमारे अंगीकार पर बिचवाई को करने के लिए। हम स्वीकार करते हैं कि हम उसे विश्वास करते हैं और हम महायाजक को छूना चाहते हैं और हम उसे छूते हैं। वो कैसे कार्य करेगा? वो पवित्र आत्मा के रूप में यहाँ पर है, तब वो उसमें से बात करेगा और आपको बिल्कुल सही से बताएगा। क्या यह सही है? अब आप विश्वास करें और बस बैठे रहें, शांत रहें, आदर रखें और देखते रहें। और यदि वो कम से कम 3 बार ऐसा करता है तो उतना ही काफी होगा। क्या ऐसा नहीं है? 3 बार यदि वो इसे करता है, 1, 2, 3 यदि वो ऐसा करता है। आप कैसे हैं? अब बस कुछ क्षण के लिए जब हम प्रार्थना करते हैं, देखो ऐसा है, मैं नहीं करता, ये ऐसा कुछ तो है जो ठीक अभी कुछ अलग ही है, प्रचार करते आ रहा था और फिर इस पर आ गया। अब मैंने लंबे समय से प्रभु को इस बात के लिए नहीं पुकारा है, लेकिन परमेश्वर मेरे हृदय को जानता है और होने पाए वो आपके विनती को प्रदान करे और मैं विश्वास कर रहा हूँ कि वो इसे करेगा। अब यहाँ एक महिला खड़ी है। हम एक दूसरे के लिए अजनबी हैं। जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैंने उसे जीवन में कभी नहीं देखा है। वो शायद कहीं तो सभा के लोगों में बैठी हुई है या मुझे कुछ साहित्य रचना के द्वारा जानती है, लेकिन स्वर्गीय पिता जानता है, जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैंने अपने जीवन में कभी भी उसकी ओर आंखें नहीं डाली है। वो एक अजनबी है। अब यदि वो एक सा है तो यहाँ एक पुरुष और एक महिला मिलते हैं, जैसे यीशु ने कुएं पर उस स्त्री से मुलाकात की, जिसके लिए मैंने कुछ समय पहले बताया था। उसने उस स्त्री की चिंता की। अब यह महिला शायद उस तरह से दोषी नहीं है जैसे वो महिला थी, लेकिन कुछ तो गलत है। लेकिन वो बस उसके बारे में उतनी ही चिंता करता है जितना वो उस महिला के लिए करता है। देखो, वो चिंता करता है। अब और जब उसने उसे देखा तो उसने उसे पहचान लिया। अब हम दोनों यहाँ इस तरह से खड़े हैं। अब मैंने उसे कभी नहीं देखा है। अब यदि वो महान पवित्र आत्मा, वो अदृश्य, अब यदि विश्वास की चेतनाएं उसे मेरे बारे में बताएंगी, वह विश्वास की चेतनाओं को लाया है और उसके वचन ने इसे अंतिम दिनों में इतना करीब लाया है, इतना तक वहाँ उसके पास इसकी तस्वीर है। वो इसे हमारे चेतनाओं के इतना करीब लाया है अभिषिक्त, और वहाँ दूर जाकर और उसे देखा है और आग के स्तंभ के रूप में वहाँ मंडरा रहा है, क्या वो नहीं है? अब वो यहाँ पर है, मैं जानता हूँ कि वो यहाँ पर है, मेरा विश्वास है कि वो यहाँ पर है। अब यदि वो इस महिला के जीवन को पकड़ने के लिए यहाँ खुद को पर्याप्त रूप से बस प्रकट कर सकता है, देखो उसने प्रतिज्ञा की है कि वो करेगा, पवित्र आत्मा वही काम को करेगा जो उसने किया था। अब मैं प्रचार करते आ रहा हूँ, मैं केवल देखने के लिए बस एक मिनट आपसे बात करना चाहता हूँ। जैसे उसने कुएं पर उस महिला से बात की थी, उसने कहा मेरे लिए जल लेकर आओ। आप जानते हैं वो शायद वहाँ बैठा हुआ उनके बारे में सोच रहा था कि वे जाकर और भोजन को लेकर आएंगे, और फिर उसने उस स्त्री से कुछ मिनट बात की थी। आप जानते हैं पिता ने उसे वहाँ भेजा था, उसको जाना था, वह येरियो को जा रहा था और वह ऊपर तामरिया को चला गया जो वहाँ पहाड़ पर है। उसे वहाँ से होकर जाने की आवश्यकता थी। ठीक है, किसी भी तरह या किसी और मुझे आवश्यकता है, पिता ने मुझे यहाँ एरिजोना से भेजा और आप अंदर आए, इसलिए यह सब एक ही बात है। कुछ भी अचानक से नहीं होता है, यह सब किसी कारण से होता है, परमेश्वर का अनुग्रह। सही है। अब आपको नहीं जानते हुए और आप वास्तव में बहुत ही स्वस्थ दिखती हैं, और ऐसा नहीं हो सकता कि आप यहाँ पर हैं, यह कुछ तो और हो सकता है, यह किसी प्रियजन के लिए हो सकता है, यह पारिवारिक आर्थिक हो सकता है, मेरे पास जानने का कोई तरीका नहीं है, आप इसे जानते हैं। लेकिन यदि वो मुझे समझाएगा कि आप यहाँ किस लिए हैं, तो आप जान लेंगे कि यह सच है या नहीं, और क्या तब सभा के लोग एक हृदय के साथ विश्वास करेंगे। अब आप हमें सुन रहे हैं और यह टेप किया गया है और हम बस यहाँ मंच पर खड़े हैं। वो महिला, मैं उसे देखता हूँ, वो अपने सिर को इस तरह से ऊपर पकड़े हुए है, उसे है, उसे सिर दर्द है जो उसे परेशान कर रहा है, जैसे आधे सिर का दर्द होता है। यह सिर दर्द लगातार हर समय होता आ रहा है, यह सच है। यदि यह सही है तो अपना हाथ ऊपर उठाएं। देखा, यह सही है। एक और बात, उसे थायराइड की परेशानी है जो उसे बताया गया है, किसी भी तरह यह आपको परेशान कर रहा है, और वो सही है, यह थायराइड है। और फिर आपके पास कुछ परेशानियां हैं, बस आपके साथ कई सारी चीजें गलत हैं, घबराहट, परेशानी, निराश हो जाते हैं, कभी कभी सोचने लगती हैं कि मैं कहाँ खड़ी हूँ, क्या मैं अंदर हूँ या बाहर हूँ। यह सही बात है, यह सच है। अब वो आपको जानता है, अब आप छुपा नहीं सकती, यदि आप करती हैं तो देखो, आप विश्वास करती हैं कि वो मुझे बता सकता है कि आप क्या हैं, आप कौन हैं। तो ठीक है वियोला, आप घर लौट जाएं, यीशु मसीह आपको चंगा करता है। क्या आप विश्वास करते हैं? मैं नहीं जानता, यीशु मसीह सारी चीजों को जानता है। यह मेरे लिए एक और अजनबी है, परमेश्वर हम दोनों को जानता है। क्या आप मुझे उसका नबी करके मानते हैं, उसका दास होने का विश्वास करते हैं? क्या आप इन बातों पर विश्वास करते हैं जिन्हें मैंने इस वचन से प्रचार किया है, वो सत्य है, आप करते हैं? यदि प्रभु यीशु मुझे बताएगा कि आप यहाँ किस लिए हैं, तो क्या आप मेरा विश्वास करेंगे कि मैं उसका सेवक हूँ? वो ऐसा कर रहा है क्योंकि वो आपकी चिंता करता है, वो उसकी चिंता आपके लिए है, वो ऐसा कर रहा है क्योंकि वह आपकी चिंता करता है, वह इन अन्य लोगों की चिंता कर रहा है जो पंक्ति में आए हैं, वह उनकी चिंता करता है। आपको परेशानी थी, एक कार दुर्घटना, कार से दुर्घटना हुई थी, आप सबको इस विषय ने हिलाकर रख दिया है, यह सही है। आपके शरीर में परेशानी है, यह सही है, यह ठीक होने जा रहा है, और घबराहट आपको छोड़ने जा रही है, तो बस घर जाएं, प्रभु को धन्यवाद देते हुए और कहें प्रभु की स्तुति हो। यदि आप विश्वास कर सकते हैं तो सब कुछ संभव है। तो ठीक है, क्या आप विश्वास करती हैं? मैं आपको नहीं जानता, आप मेरे लिए एक अजनबी हैं, लेकिन परमेश्वर आपको जानता है। क्या आप विश्वास करती हैं कि वो मुझे बता सकता है कि आपके यहाँ होने का क्या कारण है, या आपके बारे में कुछ तो और बता सकता है? क्या आप इस पर विश्वास करती हैं? वहाँ एक और महिला है, आप नहीं थी, देखो नहीं ये नहीं है, ये आप नहीं है, आप यहाँ किसी और के लिए हैं, आप किसी के लिए हैं, ये आपकी माँ है, ये सही है। उसके भी शरीर के साथ कुछ तो गलत है, ये सही है, वो यहाँ पर नहीं है, वह एक स्थान के पास ही है। मुझे जैसे अंग्रेजी के शब्द की तरह कुछ दिखाई देता है, यहाँ कहीं तो नीचे की तरफ है, आप ये सही है, क्या आप विश्वास करती हैं? तो ठीक है, आगे बढ़े, वो चंगी हो गई है, बस चले जाएं। वहाँ दो महिलाएं थी, उनमें से एक ज्यादा बूढ़ी थी, इसलिए मैंने सोचा कि वो कहाँ पर है, मैंने देखने लगा और कहाँ पर थी। प्रभु परमेश्वर सब कुछ जानता है क्या नहीं जानता, और वो सब कुछ कर सकता है, क्या आप ये विश्वास करते हैं? आमीन। क्या वो अद्भुत नहीं है? मैं इससे प्रेम करता हूँ, वो मेरा जीवन है, वो सब है जो मेरे पास है, वो सब कुछ है जो मैं चाहता हूँ, बस आगे बढ़े। उसने आपको चंगा किया है श्रीमान। वो अभिषेक उस महिला का पीछा कर रहा था, वहाँ एक और महिला बैठी हुई है जो निराशा से परेशान है, और उसकी बांह के नीचे कुछ तो वृद्धि हुई है, क्या सही है? जब उसने आप पर हाथ रखा तो आपका एक कुछ मजाक सा लग रहा था, क्या यह सही नहीं था? वह तब हुआ जब उसने आपको चंगा किया, आप चंगी होने जा रही हैं, यीशु मसीह। देखो वो कहाँ है, वो महिला जो प्रार्थना कर रही थी, या यहाँ है, देखिए, क्या आपने ध्यान दिया? जब वो प्रार्थना कर रही थी, मैं उसके लिए प्रार्थना कर रहा था, क्या हुआ? देखा, मैंने एक और महिला को देखा है, और मैंने उस तरह से देखा, वहाँ एक महान अनुभूति थी, उन्हें एक दूसरे को जानना चाहिए कुछ, या वे एक दूसरे से परिचित होना है, क्योंकि उस महिला को यहाँ इस महिला के प्रति भावना अनुभूति हो रही थी। और फिर ये महिला वहाँ आगे जाती है और उसे छूती है, और जब उसने ऐसा किया, मैंने देखा और मैंने कुछ तो उस ओर देखा, और वो वहाँ पर खड़ी थी। मैंने उस महिला को अपने जीवन में कभी नहीं देखा। परमेश्वर जो स्वर्ग में है वो ये जानता है। ओ प्रभु, आप संदेह क्यों करोगे? यदि आप विश्वास कर सकते हैं तो वो आपकी आदतों को भी दूर कर सकता है। क्या आप ये विश्वास करते हैं? क्या आपको विश्वास है कि वो आपको चंगा करेगा? आगे बढ़े और आप इसे ठीक अभी बंद कर दें, और कभी भी धूम्रपान न करें। जाएं और अपने पूरे हृदय से विश्वास करें, परमेश्वर पर भरोसा रखें, संदेह न करें। क्या विश्वास कर रहे हैं? क्या हमारे पास अभी तक तीन ही हुए हैं? परमेश्वर पर भरोसा रखें, संदेह न करें, केवल विश्वास करें। क्या आप विश्वास करते हैं कि उसका अभिषेक अब यहाँ पर है? आमीन। संदेह न करें, विश्वास करें। मैं आप पर हाथ रखने जा रहा हूँ और विश्वास करता हूँ, क्या आप मेरे साथ विश्वास करेंगे? यीशु मसीह के नाम पर ये भाई चंगा होने दो, आमीन। अब विश्वास करें, संदेह न करें। जरा एक क्षण रुकें, वहाँ पीछे सभा के लोगों में कुछ तो ऐसा हुआ और मैं इसे नहीं देख सका, यह ठीक यहाँ पीछे है। मैं सोचता हूँ ये अभी मुझसे छिपा हुआ है, यहीं पर है, मैं इसे छाया में देखता हूँ। ये एक आदमी है और वो घबराहट से पीड़ित है, उसका एक लड़का है जिसे मिर्गी हुई है। अपने पूरे हृदय से विश्वास करें श्रीमान, क्या आप करते हैं? ऐसा ही है, तो ठीक है, वहाँ उस लड़के पर अपना हाथ रखें और वो ठीक हो जाएगा, आमीन। प्रभु की स्तुति हो। क्या आप विश्वास कर रहे हैं? उस शैतान ने सोचा कि वो उससे छिपा सकता है, लेकिन उसने इसे विफल कर दिया। क्या विश्वास करते हैं? वो ठीक अभी भी कहीं आगे बढ़ रही है। ओह प्रभु, अनुग्रह और चिंता के लिए। कहीं तो एक और मिर्गी यहाँ पर है। जी हाँ, यहाँ ये ठीक यहाँ पर है। क्या आप विश्वास करते हैं? भरोसा रखें। क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपको जानता है? आप ओहियो वापस जा सकते हैं, चंगे बने रहें। श्रीमान नेल्सन पी ग्रांट, यही आपका नाम है। यदि आप विश्वास करेंगे तो वे चीजें आपको छोड़ देंगी और आपको और परेशान नहीं करेंगी। मैंने अपने जीवन में उस व्यक्ति को कभी नहीं देखा, उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। अब आप इसे छुपा नहीं सकते, पवित्र आत्मा यहाँ पर है। आइए अब हमारे सिरों को झुकाएं और परमेश्वर को स्तुति दें। प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप कल आज और युगानुयुग युग एक सा है। आपका अनुग्रह कभी विफल नहीं होता प्रभु, यह हमेशा ही एक सा है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपकी महान दया और भलाई लोगों पर बनी रहेगी। आपने काफी चिंता की है प्रभु कि आकर और खुद को प्रमाणित करे। आप परमेश्वर है, आप बहुत ही एक पवित्र महान पवित्र आत्मा है। अब होने पाए ये लोग विश्वास करें प्रभु, जैसे वे यहाँ से गुजरते हैं और उनमें से हर एक जन चंगा हो जाए, जैसे आपका अभिषेक यहाँ पर है। मैं खुद के हाथों को इन रुमालों पर रखता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि आप इन विनतियों को प्रदान करेंगे पिता, सभा के लोगों में दोनों ओर प्रभु इसे प्रदान करें। और होने पाए हर एक व्यक्ति जो दैविक उपस्थिति में है अब पर्याप्त चिंता करे, ताकि ये विश्वास करे कि आपने अपने लोगों के बीच अंतिम दिन में जी उठने और साबित करने के लिए पर्याप्त चिंता की थी। आप उन्हें चंगा नहीं कर सकते प्रभु, जिसे आप कर चुके हैं वह नहीं कर सकते हैं। आप पहले से ही उन्हें चंगा कर चुके हैं और यह एकमात्र चीज है जिसे उन्हें विश्वास दिलाने के लिए किया जा सकता है। और आपने पर्याप्त चिंता की है, हालांकि जितना अविश्वास करते हुए हम डगमगाने लगते हैं, आप तब भी पर्याप्त चिंता करते हैं, जिससे खुद को दिखाएं कि आप हमारे बीच जीवित हैं और मृतकों में से जी उठे हैं। होने पाए हम अपनी चिंता को उस पर डाल दें और दैविक उपस्थिति में हर एक व्यक्ति अपने प्राण और शरीर दोनों में चंगा हो जाए, यीशु मसीह के नाम के जरिए से, आमीन। तो ठीक है, इस तरफ से आ जाएं, लोगों को सीधे या इसके साथ ही आने दें। तो ठीक है, बिली उन्हें भाग भाग करके बुलाएगा। नहीं, अब आइए और बात न करें, वो अभिषेक मुझ पर है। देखें, मैं यहाँ पर हाथ को रखना चाहता हूँ, जबकि यह यहाँ पर है। देखा, मैं उस परखने पर रोक नहीं सकता हूँ। यदि मैं करता हूँ, यहाँ कितने लोगों के लिए प्रार्थना की जानी है? अपना हाथ ऊपर उठाएं। लगभग 70%। देखा, यह ठीक अभी 1:10 बाकी हैं। इसके बाद बपतिस्मा की सभा होने जा रही है। मैं इसे नहीं कर सकता, लेकिन आप विश्वास कर सकते हैं। यदि वो पर्याप्त चिंता करता है कि खुद को दिखाए, तो आपको विश्वास करने के लिए पर्याप्त चिंता करनी चाहिए। क्या यह सही है? तो ठीक है, सारे सभा के लोग प्रार्थना करें और बिल्ली या भाई नेविल इनमें से एक का उपयोग करेंगे, इस माइक्रोफोन का उपयोग करेंगे। आइए हम अपने सिर को नीचे की ओर रखें और प्रार्थना करें जब वे पंक्ति से होकर गुजरते हैं। अब मैं आप में से प्रत्येक के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं, आप पर हाथ रखकर, और मांगूंगा कि आप जिस किसी दुष्ट से ग्रस्त हैं, वो आप में से निकल जाएगा जब आप इस अभिषिक्त स्थान के नीचे से होकर गुजरते हैं। यदि मैं इसे इस तरह से हाथों पर रखता हूं, वो अभिषेक पीछे भी उसी तरह से है जैसा ये यहाँ है, लेकिन मैं ऐसा करके इसे आपके विश्वास के लिए बनाता हूँ। सभी लोग अब प्रार्थना करें। यीशु मसीह के नाम में, होने पाए ये छोटा लड़का चंगा हो जाए, आमीन। परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में हमारा भाई चंगा हो जाए, यीशु मसीह के नाम में। मैं आपके आदेश का पालन कर रहा हूँ प्रभु। आपने कहा ये चिन्ह विश्वासियों के पीछे जाएंगे, हम दोनों विश्वासियों के। यदि वे बीमारों पर अपने हाथ को रखते हैं तो वे चंगे हो जाएंगे। यीशु के नाम में मैं इस कार्य को करता हूँ। यीशु मसीह के नाम में मैं इस भाई पर हाथ को रखता हूँ, आमीन। यीशु मसीह के नाम में मैं अपने भाई पर उसके चंगाई के लिए हाथ को रखता हूँ, आमीन। वह आपकी चिंता करता है बहन, मैं चिंता करता हूँ कि अपने हाथ को रखूँ। क्या आप विश्वास करने के लिए पर्याप्त चिंता करती हैं? आमीन। यीशु मसीह के नाम में ऐसा हो जाए कि हमारी बहन चंगी हो जाए। यीशु मसीह के नाम में हमारा भाई चंगा हो जाए। यीशु मसीह के नाम में हमारा भाई चंगा हो जाए। यीशु मसीह के नाम में हमारी बहन चंगी हो जाए। यीशु मसीह के नाम में हमारा भाई चंगा हो जाए। यीशु मसीह के नाम में हमारा भाई चंगा हो जाए। यीशु मसीह के नाम में हमारी बहन चंगी हो जाए। यीशु मसीह के नाम में हमारा भाई चंगा हो जाए। यीशु मसीह के नाम में हमारा भाई चंगा हो जाए। यीशु मसीह के नाम में हमारा भाई चंगा हो जाए। यीशु मसीह के नाम में हमारी बहन चंगी हो जाए। यीशु मसीह के नाम में मेरी इस बहन को चंगा करे प्रभु। यीशु के नाम में मेरी इस बहन को चंगा करे। यीशु मसीह के नाम में मेरे भाई को चंगा करें। यीशु मसीह के नाम में मेरी इस बहन को चंगा करें। यीशु मसीह के नाम में मेरी इस बहन को चंगा करें। यीशु मसीह के नाम में मेरी बहन को चंगा करें। प्रभु, यीशु मसीह के नाम में मेरी बहन को चंगा करें। भाई, वो आपकी चिंता करता है, क्या आप करते हैं? यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाएं। अब सभी लोग प्रार्थना में रहें, सभी प्रार्थना करें। यह यहाँ से आते हुए आपके लोग हैं। यीशु मसीह के नाम में मेरी बहन को चंगा करें, यीशु के नाम में मेरे इस भाई को चंगा करें, आमीन। यीशु मसीह के नाम में मेरे इस बहन को चंगा करें, यीशु मसीह के नाम में मेरी बहन को चंगा करें, यीशु मसीह के नाम में मेरी बहन को चंगा करें, यीशु मसीह के नाम में मेरी बहन को चंगा करें, यीशु मसीह के नाम में मेरी छोटी सी बहन को चंगा करें, यीशु मसीह के नाम में मेरी इस बहन को चंगा करें, यीशु मसीह के नाम में मेरी इस बहन को चंगा करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस बहन को चंगा करें, यीशु मसीह के नाम में मेरी बहन को, मेरे भाई को चंगा करें, मेरी इस बहन को चंगा करें, मेरी इस बहन को चंगा करें, प्रभु मेरी इस बहन को चंगा करें। मैं यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ, यीशु के नाम में मेरी बहन को चंगा करें, पिता यीशु के नाम में मेरी बहन को चंगा करें। बहन वो चिंता करता है क्या आप करती हैं, यीशु के नाम में अपनी चंगाई को ग्रहण करें, यीशु के नाम में अपनी चंगाई को ग्रहण करें, बहन यीशु के नाम में अपनी चंगाई को ग्रहण करें, यीशु के नाम में अपनी चंगाई को ग्रहण करें, यीशु के नाम में इसे चंगा करें मेरी बहन को, यीशु के नाम में इसे चंगा करें मेरी बहन को, पिता यीशु के नाम में इसे चंगा करें मेरे भाई को, यीशु के नाम में इसे चंगा करें मेरी बहन को, यीशु के नाम में हमारी बहन को चंगा करें, यीशु के नाम में मेरे भाई को चंगा करें, प्रभु यीशु के नाम में मेरी बहन को चंगा करें, पिता यीशु के नाम में इसे चंगा करें मेरे भाई को, यीशु के नाम में मेरी बहन को चंगा करें, यीशु के नाम में मेरी बहन को चंगा करें, यीशु के नाम में छोटे लड़के को चंगा करें, यीशु के नाम में भाई क्रिश को चंगा करें, प्रभु यीशु के नाम में हमारी इस बहन को चंगा करें, यीशु के नाम में हमारी इस बहन को चंगा करें, यीशु के नाम में पिता दोनों को चंगा करें, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे भाई। क्या ये आपका बालक है, ये आपकी पत्नी है? अच्छा, मुझे यह न पता था। परमेश्वर आपको आशीष दे भाई, यीशु के नाम में इसे चंगा करे मेरे भाई को, यीशु के नाम में इसे चंगा करे मेरी बहन को, पिता यीशु के नाम से इसे चंगा करे मेरी बहन को, यीशु के नाम से इसे चंगा करे मेरे भाई को, यीशु के नाम से इसे चंगा करे मेरी बहन को, इसे चंगा करे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से इसे चंगा करे मेरी बहन को, यीशु मसीह के नाम से इसे चंगा करे मेरे भाई को, उन्हें चंगा करे पिता यीशु के नाम से। मैं अपनी सच्चाई की प्रार्थना को अर्पण करता हूँ। हर एक जन, आप चिंता करते हैं, यीशु चिंता करता है। यीशु ने संदेश को भेजा, यीशु ने अपनी आत्मा को भेजा, यीशु ने अपना वचन भेजा, यीशु ने अपने दास को भेजा। हम सभी चिंता करते हैं, अब क्या आप करते हैं? यदि आप करते हैं तो इसे विश्वास करें, इसे सच्चाई से स्वीकार करें, इसे किया जाएगा।
Oh God, heaven, have mercy to heal. Grant it, Lord. May flesh and strength come in the name of Jesus Christ. God, in the name of Jesus Christ, heal this my brother. God, our sister, here in the chair, I pray that you heal her in Jesus' name. God, heal our sister here in her fine, active chair in Jesus' name. God, in the name of Jesus Christ, heal this my sister. God, heal my brother, I pray. God, in the name of Jesus Christ, heal my brother. In the name of Jesus Christ, heal my brother. In Jesus' name.
Give me one, just give me one.
Come with all sincerity. Don't doubt that. It's just believing. Everybody praying. Now, this is our people passing here, God's children. Believe. Heal our sisters. Jesus. Heal my precious beloved, Lord. God has waited so long for this. May this be that very hour. In Jesus' name, heal us. In the name of Jesus, in Jesus' name, heal us. In Jesus' name,
amen.
That's the way to receive it, brother. Now, for that, the Lord has done it. Praise the Lord. Hallelujah. You see it, that child, isn't it? Hallelujah. Now, he lets me know what's wrong with me. I just don't call it out.
Amen.
Oh, God. Here's me. I pray for her. She's standing here for healing. We think of that little thing, Lord. She was sure to be pushed by it now. Her sister standing in her place, Lord. Grant, oh God, grant these requests in Jesus' name for her. God, have mercy upon our brother and heal him, Father, in Jesus' name. God, in the name of Jesus Christ, touch this my precious brother and make him well. In the name of Jesus Christ, heal our sister. In the name of Jesus Christ, Lord, heal our sister. Heal our brother, Father. In the name of Jesus Christ, heal this, our sister. Oh God, in the name of Jesus Christ, heal this, our God, heal this. In the name of Jesus Christ, in the name of Jesus Christ.
Thank you.
God, make my brother. Make it go down, Lord. May you see it. Feel the power of God. In Jesus' name. God, heal our brother. In the name of Jesus Christ, heal our sister. God, heal our brother. May you see you do so. May you grant now to all men. Heal us, Lord. Lord, I pray for mercy to your Lord. God, heal us.
वो तुम्हारी चिंता करता है, वो तुम्हारी चिंता करता है, धूप और छांव में से होते हुए वो तुम्हारी चिंता करता है, वो तुम्हारी चिंता करता है। केवल उस पर अपनी चिंता को डाल दो, वो तुम्हारी चिंता करता है, धूप या छांव में से होते हुए वो तुम्हारी चिंता करता है। क्या आप उसकी चिंता करते हैं? क्या आप उसके वचन की चिंता करते हैं? आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम कुछ क्षण के लिए अपने सिर को झुकाएंगे। मेरा विश्वास है कि मैंने इन विनतियों का उत्तर दिया, मैंने विनतियों का उत्तर दिया। मैंने नहीं किया, आप में से प्रत्येक था। कुछ समय पहले मैंने सभा में कुछ गलती को किया। मुझे यकीन है कि किसी ने इसे देखा है और कहीं तो परमेश्वर ने अभी मुझे बताया। मैंने किसी और के लिए कुछ कहा जबकि मैंने किसी और के लिए कहा था। मैं उस व्यक्ति को नहीं देख सकता था जहाँ पर वो था, लेकिन यह कोई तो था कि मैंने किसी और के लिए आशीष को दिया। और मैं वे बहुत तेजी से आ रहे थे और मैं ध्यान नहीं दे रहा था और मैंने नहीं किया। हाँ, ऐसा था। मैं इसे अब देखता हूँ। ये वो पुरुष और महिला हैं जो यहाँ अब बैठे हुए हैं। यदि मैं गलत नहीं हूँ तो मैंने कल रात को एक होटल के रूम में या कहीं तो और होटल के यार्ड में मैंने पिछली रात को उनसे हाथ मिलाया था। जेफरसन विले में मैंने उस पुरुष से कुछ तो कहा था, इसे बहन कहकर बुलाया बजाय भाई कहने के। जब आप वहाँ से गुजर रहे थे, क्या आपने ध्यान दिया था? मेरा इसका मतलब आपकी पत्नी के लिए था। अब वो कुछ समय से परेशान रह रही थी, एक लंबे समय तक एक अंदरूनी परेशानी है। आप इलिनियोस से हैं, श्रीमती मोगालैंड, यह सही है, ये आपका नाम है। अब आप जानते हैं कि मैं आपको नहीं जानता था, लेकिन आप अभी संपर्क में हैं। आप अपने पूरे हृदय से विश्वास करें, और यदि आप विश्वास करेंगे तो एक पूर्ण निष्कर्ष होगा, सामान्य रूप से जैसा से हमेशा से था, जिससे आप हर समय देख सके। अब मैं केवल एक चीज जो मैं जानता हूँ, कल रात मुझे याद है, मैं उस व्यक्ति के लिए सोच रहा था, मैंने सोचा था उसके पास ऐसे सुंदर बाल थे और उसके बालों को बीच से मांग निकालता था। यह सफेद बालों वाला व्यक्ति यहाँ पर बैठे हुए था, मैं बस ऐसे ही उसे देखा और वहाँ पर प्रकाश ठीक उसके चारों ओर ठीक उन पर इस तरह से चमक रहा था और यही वो था। और तब मेरे आगे दर्शन आ गया, मुझे नहीं पता कि वे कौन थे और न ही इसके बारे में मैं कुछ जानता भी हूँ। वो महिला कल रात बाहर थी, मैंने कहा क्या आप सभा में आ रही हैं? उसने कहा जी हाँ, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह ने इसे फिर से खींच लिया और ये यही था। क्या आपने इसे प्रार्थना पंक्ति में देखा भाई, कि कुछ कहा गया था जो कि अदल बदल हो गया? यह आपकी बजाय बहन के लिए था, यह सही था, वह बहन के पास चला गया। अब आप इससे जान सकें कि उस प्रार्थना की पंक्ति के जरिए से कि प्रभु का दूत वहाँ पर था, यह बुला सकता है, लेकिन जैसा कि आप बुलाते हैं यह कमजोर 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 पड़ता है। देखा तो वो आपकी चिंता करता है और मैं आपकी चिंता करता हूँ। मैं तब चार या पांच से अधिक जा सकता था और तब पहली चीज जो आप जानते हैं, बिली मुझे पुलपिट से बाहर ले जाता है। लेकिन मैंने सोचा यदि निश्चय ही मैं आप सबके साथ इन सारे वर्षों में रहा हूं और हर कहीं और यहाँ वहाँ सारे राष्ट्र में, आप जानते हैं मैं आपसे प्रेम करता हूं। ओह, मैं आपसे प्रेम करता हूं जैसे आप मेरे अपने बच्चे थे और आप मेरे सुसमाचार में मेरे बच्चे हैं। मैंने आपको मसीह के लिए उत्पन्न किया है सुसमाचार के जरिए से, और मैं यहां सोचता हूं ये विनती और इत्यादि यही है, मैंने इसका उत्तर दिया है। अब मैं आपसे प्रेम करता हूं और मैंने सोचा यदि मैं जाकर और आप पर हाथ रखा और आपने देखा कि पवित्र आत्मा ऐसा कर रहा था, और फिर उस पंक्ति में एक प्रकार की कोई शंका आरंभ हुई, मैं इससे चूक गया क्योंकि प्रार्थना की पंक्ति बहुत ही तेजी से बढ़ती जा रही थी और एक की आशीष को दूसरे को सुनाया, और फिर पवित्र आत्मा सभा के खत्म होने के ठीक बाद ठीक पीछे को घूमता है और इसे फिर से पीछे की ओर दिखाता है। देखा, क्या आप नहीं देखते वो चिंता करता है? अब क्या आप चिंता करते हैं? क्या आप यह कहने के लिए पर्याप्त चिंता करते हैं? इस समय से लेकर मेरे हृदय में कुछ ऐसा कहता है कि मेरी परेशानी खत्म हो गई है, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक होने जा रहा हूँ। क्या आप इसे विश्वास करते हो? अपने हाथ उठाए, मैं विश्वास करता हूँ। परमेश्वर आपको आशीष दे। धूप या छांव में से होते हुए वो तुम्हारी चिंता करता है, यह तो बस एक बड़े महान प्रेम का भोज है। आइए इसे गाएं और एक दूसरे के साथ हाथ को मिलाएं। वो तुम्हारी चिंता करता है, वो तुम्हारी चिंता करता है। धूप या छांव में से होते हुए वो तुम्हारी चिंता करता है। मैंने आज सुबह आपको बहुत देर तक रोके रखा है, तब मेरा पास्टर तब तक प्रचार नहीं करता जब तक मैं करता हूँ। वो आज रात आपके लिए संदेश को लाने का प्रयास करेंगे और हम आपको इसके बारे में बताएंगे कि अगले रविवार को सेवा होगी या नहीं उस नेतृत्व के नीचे। यदि मैं नहीं करता तो केवल वैसे ही सभा होगी। तो आप सभी को प्रभु आशीष दे, हर एक को। मुझे लगता है कि ठीक अभी एक बपतिस्मा की सभा होने जा रही है, तो यदि आप समाप्त करने के लिए बस कुछ क्षण के लिए खड़े रहेंगे, आइए फिर से गाएं। अपनी चिंताओं को उस पर डाल दो क्योंकि वो आपकी चिंता करता है। और अब यदि आप उसकी चिंता करते हैं, आइए कहें प्रभु मैं, जब आप ऐसा करते हैं तो आप उस बयान को दे रहे होते हैं, प्रभु मैं जानता हूँ आप मेरी चिंता करते हैं और मैं अपने हाथ को उठा रहा हूँ, मैं आपकी चिंता करता हूँ। और आइए अब हमारे हाथों को ऊपर उठाए रखें इस प्रेम के भोज में, जैसा कि हम गाते हैं। वो तुम्हारी चिंता करता है, वो तुम्हारी चिंता करता है। धूप या छांव में से होते हुए वो तुम्हारी चिंता करता है। अब जब हम अपने सिर को झुकाते हैं तो कहें, ओह मेरे प्रभु की मधुरता, क्या आप महसूस नहीं करते हैं कि उसका प्रेम बस आपको उसके करीब खींच रहा है? कहें, और प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूँ, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, आप मेरी चिंता करते हो प्रभु, आपने मेरी इतनी अधिक चिंता की कि इतना तक कि जब मैं पापी था आप मेरे लिए मरे, आप मेरे अपराधों के लिए घायल हो गए थे, आपके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया था। वो तुम्हारी चिंता करता है, वो तुम्हारी चिंता करता है, धूप या छांव में से होते हुए वो अब भी तुम्हारी चिंता करता है। बस इसे याद रखें, जैसे आप अपने सिर को झुकाते हैं, मैं भाई एडवर्ड से यहाँ कहूँगा कि क्या वो यहाँ प्रार्थना के कुछ शब्द से समाप्त करेंगे, लेकिन सबसे पहले आइए हम इसे फिर से गाते हैं। याद रखें, धूप या छांव हो वह फिर भी चिंता करता है। उसने चिंता की, क्या आप चिंता करते हैं? कहें, हाँ प्रभु मैं वादा करता हूँ कि मैं करूँगा, मैं ठीक अभी आगे बढ़ूंगा, आज के बाद से मैं चिंता करूंगा, मैं अपनी गवाही की चिंता करता हूं। वह आपकी चिंता करता है, भाई एडवर्ड्स।